This lecture podcast is brought to you by ThinkLink Institute. Join our lifelong learner program today and ThinkLink with experts for your intellectual journeys. You can also support us in our mission to connect audiences with highly qualified experts in social sciences and humanities. Visit www.thinklink.co and choose the educational assistance program you would like to support.
आर्टिस्ट जो है वो कहता है, आते हैं रैप से मजामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश, समझे भाई? तो वो लेकिन ये कि मैंने आर्टिस्ट को अभी ऐसा छेड़ा बेड़ा नहीं है, अभी उनको कहीं और छेड़ेंगे फिर कभी। अभी तो सिर्फ हम देख रहे थे ये कि ये तीन जो है वो कहते हैं सच हमसे बाहर कहीं है, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। रिलीजन कहता है अल्लाह ने हमें दे दिया सच, वो हम फैला रहे। फलसफा कहता है हम दलील से डिराइव कर रहे और फैला देंगे, और साइंस कहती है मेथडोलॉजिकली एक्सकवेट करेंगे, और आर्टिस्ट कहता है मुझे ना नेचर मेरे अंदर से निकलता है, क्षमा फूट रही है और वो बांट रहे। तो आपने देखा होगा कि जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो सब यही बोलते हैं, ये मेरे से हो गया, सरजद हो गई, सरजद। और हर सरजद जो होता है उससे वो कुछ दूसरे से अलग होता है, जिस तरह हर खुदा की तकलीफ अलग अलग होती है ना, मल्टीपल गॉड्स का पॉलीथिस्टिक गॉड्स जो होते हैं उनमें अलग गॉड अलग अलग खसूसियात रखते हैं, हर गॉड यूनिक होता है। इसी तरह आर्टिस्टों में भी हर आर्टिस्ट यूनिक बना हुआ होता है। और वो कहता है मैं हूं खालिक इस ख्याल का, तो खालिक को अपनी तखलीक दिखाने का शौक पैदा हो जाता है, फिर वो मुशायरे करता है, एग्जीबिशंस करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ये सब कुछ करता है। तो ये वो बेचारे अलग 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 मस्त लोग हैं, उनका अलग से करेंगे कभी, देखेंगे उसका कि क्या करता है। वो भी एक अलग अलग दुनिया है, वो इनसे ऊपर है। और आम आदमी को ना फलसफा इतना अफेक्ट करता है ना साइंस करती है, आम आदमी को ये अफेक्ट करता है, रिलीजन या आर्ट, ये दोनों करते हैं सीरियसली अफेक्ट। अच्छा जी, अब आप शुरू करें क्या? अच्छा जी, तो ये जो है ना हम कोशिश करें दो चैप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स है उसको, ये जब आप रीड करेंगे तो उसमें बास चीजें बहुत आसान है, और उनको हमने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में किया हुआ भी है। जैसे हमने डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग हमने एट लेंथ की हुई है, उसके लेक्चर्स भी आपके पास हैं, जो पूछे तो उसको वो दे सकते हैं, यू नो। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा, और कुछ चीजों को हम जरा सरसरी तौर पर लेके निकल जाएंगे। ये जो पहला चैप्टर है, ये किताब है इसकी चार्मर्स की, इंट्रोडक्शन की किताब है, बहुत आसान सी किताब है, बिगनर्स के लिए लिखी हुई है, सही है। तो जो भी आदमी साइंस को थियोरेटिकली रीड करने का शौक रखता है तो उसके लिए पहली किताब के तौर पे ये एक अच्छी किताब है, और ऑथेंटिक भी है। फिर हर चैप्टर के बाद उसने सजेस्टेड रीडिंग्स भी दी हुई है कि आप ये और किताबें पढ़ सकते हो। तो कोई इट्स तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो इंडक्टिविज्म पे है, सही है, सही है। और दूसरा चैप्टर जो है सोफिस्टिकेटेड इंडक्टिविज्म पे है, जिसे जिसको वो कहता है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। मैं दोनों चैप्टर को टेकअप करूंगा एक ही सेशन में, क्योंकि इंडक्टिविज्म है, सही है। थोड़ा सा हम तेज चलेंगे क्योंकि रिकॉर्ड होगा, फिर बाद में आप सुन लेना किसी तरह। पहले मैं इसे कॉन्टेक्चुअलाइज कर देता हूं। फिलोसफी में मतलब ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, फिलोसफी नहीं हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के अंदर ये जो टर्म है साइंस, ये फिलोसफी में भी बहुत ही रिगरसली इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी 17th century के बाद, सही है। ये जो हम जो कोर्स है ये मॉडर्न साइंस के ऊपर कोर्स है, सही है, एंशियंट साइंस के ऊपर ये कोर्स नहीं है, या चाइनीज या पर्शियन वगैरह के पास जो मेथोडोलॉजीज थी उसके ऊपर नहीं, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। और एंशियंट साइंस जो के एरिस्टोटेलियन साइंसेस जिन्हें हम कहते हैं, वो चूंकि सूडो साइंटिफिक समझी गई बाद में मॉडर्न साइंस की वजह से, इसलिए उसको भी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। इस वक्त जो दुनिया के अंदर नोशन ऑफ साइंस प्रिवेलेंट है वो चूंकि इंट्रिंसिकली यूरोसेंट्रिक और मॉडर्न है, इसलिए हमें मॉडर्न नोशन ऑफ साइंस के चैलेंजेस और डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना है इन 5 लेक्चर्स के अंदर। जब ये 5 लेक्चर हो जाएंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको हम डीपन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं उसको, फिर या उसकी इंप्लीकेशन ड्रॉ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो जो बॉटम लाइन है वो ये कि लव साइंस साइंस इस्तेमाल होना शुरू हो गया था फिलोसफी में भी। मिसाल के तौर पे डेकार्ट्स ने जब अपना काम शुरू किया तो उसने कहा कि फिलोसफी का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलोसफी। तो डेकार्ट्स ने कहा द पर्पस ऑफ फिलोसफी इज टू डेवलप रिगरस साइंस। फलसफे का क्या मकसद है, फलसफे का मकसद है रिगरस साइंस कंस्ट्रक्ट करना, रिगर के साथ रिगरस साइंस, सही है। इसी तरीके से इमानुएल कांट ने जो है वो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स के लिए एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट जनरेट किया और उसने रीइंस्टेट किया, लेजिटिमेट जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की फिलोसफी ऑफ साइंस के लिए या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के लिए। और इसे हम टेक्निकल टर्म में, ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो फलसफे का बैकग्राउंड वगैरह रखते हैं ताकि वो समझ सकें कि इसकी कॉन्टेक्चुअलिटी क्या है। और उसने एक चीज जिसे हम कहते हैं कैंटियन ट्राइकोटमी, और उसने ये बताया कि दुनिया में एक एक खास तरह के जुमले या स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो नेसेसरीली ट्रू भी होती हैं और इंफॉर्मेटिव भी होती हैं, और उस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स कांट जैसा बड़ा थिंकर समझता था जो नेसेसरीली ट्रू हो और इंफॉर्मेटिव भी हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्नॉलेजमेंट थी कि नोशन ऑफ साइंस के हवाले से लोग इसको रेफर करते हैं कैंटियन ट्राइकोटमी को। इसी तरीके से जो दूसरे मॉडर्न थिंकर हैं जैसे लाइबनीज है या स्पिनोजा है या ये सारे जो थिंकर्स थे कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट थिंकर कहलाते हैं, हार्ड कोर रैशनलिस्ट हैं ये, इन सब में जो इशू था वो ये था कि असल जो मसला है इंसान का वो इल्म में और जो नॉलेज या अनजस्टिफाइड बिलीफ्स जो अमलगमेट हो जाते हैं इंसान के जहन के अंदर, यानी कि इल्म और असम्पशंस जिस तरह एक दूसरे के साथ एमलगमेट हो जाती हैं, खलत मलत हो जाती हैं, उनको छांटे बगैर सही इल्म के रास्ते पे इंसान नहीं चल सकता। तो असल में जो इंसान का जो सफर है वो बुनियादी सफर उस वक्त शुरू होता है जब वो अपना दामन छुड़ा लेता है असम्पशन से, सपोजिशन से, ट्रेडिशन से। लिहाजा असल इल्मी जिद्दोजहद उस वक्त शुरू होती है जब आपकी जो सफर हो वो प्री सपोजिशन लेस हो, प्री सपोजिशन लेस। तो जो जब डेकार्ट से पूछा गया ना कि रिगरस फिलोसफी का क्या मतलब होता है, तो उसने बताया कि वो इल्म जो सपोजिशंस के ऊपर ना खड़ा हो या प्री सपोजिशन लेस हो, उसकी कोई सपोजिशंस ना हो। लिहाजा आप पहले से किसी चीज को सच्चा मान लें और फिर उसके लिए जिद्दोजहद करें, तो फलसफियों ने इसको इसकी बेखनी करने की कोशिश की, खास तौर पर मॉडर्न फिलोसफी ने इसको फंडामेंटली इंपॉर्टेंट समझा कि आप सपोजिशन से दामन छुड़ाएं। और उन्होंने कहा कौन कर सकता है ये सलाहियत, किसमें है ये, तो उन्होंने कहा साइंस एक ऐसी डोमेन है जो आपको सपोजिशन से आजाद करके शैकल्स को ब्रेक कर सकता है। एक दूसरा जो चीज आपको बांधती है इल्म से वो आपका जो नॉर्मेटिव बेंट है, नॉर्मेटिव बेंट यानी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब तक कि आप अपने आप को इस सवाल से अपना दामन नहीं छुड़ाते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा और क्या सही है और क्या गलत और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं इखलाकियात, जो इंसानी तहजीब का और तमद्दुन का तुर्रे इम्तियाज है, तुर्रे इम्तियाज, उससे दामन छुड़ाकर असल इल्मी जिद्दोजहद होती है। क्यों? क्योंकि खैर और शर के मेयारात और अच्छाई और बुराई के मेयारात और जायज और नाजायज की हदबंदियां आपको हकीकी इल्म के हुसूल से रोकती हैं। लिहाजा जो दूसरी जो खूबी या खसूसियत को आइडेंटिफाई कर रहे थे अर्ली मॉडर्न थिंकर्स, वो था पॉजिटिविस्टिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिविस्टिक होनी चाहिए, पॉजिटिविस्टिक, हाँ, एक प्रीसपोजिशन लेस और दूसरी पॉजिटिविस्टिक। पॉजिटिविस्टिक का मतलब समझते हैं आप लोग? पॉजिटिव क्या मतलब होता है? पॉजिटिव नहीं, ये वो वाला मुस्बित नहीं है, ये वो पॉजिटिव होता है जिस तरह बच्चे को जब मां भेज रही होती है घर से बाहर, बेटे जिंदगी में पॉजिटिव रहना, तो बच्चा कहता है जी पॉजिटिव, ये वो वाला पॉजिटिव नहीं है। ये पॉजिटिव है कि आपको इस सवाल से बहस करनी है हाउ थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड, हाउ थिंग्स शुड हैपन शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस। यानी कि आपको किस सवाल से बहस करनी है? पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कैसी अप्रोच होती है? पॉजिटिविस्टिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच समझी जाती है हार्डकोर साइंसेस के अंदर या अर्ली मॉडर्न फिलोसफी के अंदर, जो ये सवाल को फरामोश कर देती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उनका जो बुनियादी सवाल होता है वो ये, हाउ थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड, ये है क्वेश्चन उनका, या व्हाट इज द केस, व्हाट इज द केस। क्योंकि जब भी हम ये सवाल उठाते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस सवाल के साथ जब हम हकीकत को समझने जाते हैं तो हम हकीकत को वैसा नहीं देखते जैसा कि हकीकत है, बल्कि हकीकत को वैसा देखना चाहते हैं जैसा कि हम चाहते हैं कि हकीकत हो जाए। ये जब आप करते हैं अप्रोच, तो वो सपोजिशंस को, आपकी जो सपोजिशंस होती है उसको दाखिल कर देती है आपके तज्जिए और आपकी फिक्र के अंदर, लिहाजा आप हकीकत को पहचान नहीं पाते इन इटसेल्फ। लिहाजा जो अर्ली मॉडर्न थिंकर्स थे उन्होंने तवज्जो किस चीज के ऊपर दी कि आपको डिसीव करने वाली जो चीजें हैं वो दो हैं, एक आपके खैर और शर के जो नोशंस हैं जो आपके जहन में है, पहला उनको आपको क्या करना पड़ेगा? साइड में करना पड़ेगा। दूसरी आपको क्या करना पड़ेगा? जब हकीकत को जानने की आपको जिद्दोजहद करनी है तो आपको सिर्फ ये सवाल उठाना है, हाउ थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज, व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द एनालिसिस। अब इंसान का प्रॉब्लम यह है कि इंसान चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जो असर्ट करता है और सबसे ज्यादा कंसर्न जो रहता है और सबसे ज्यादा जुमले जो जिंदगी में वो बोलता है, वो सबसे ज्यादा जुमले नॉर्मेटिव होते हैं और सबसे ज्यादा जुमले जो सुनता है खास तौर पे घर में वो ज्यादातर नॉर्मेटिव ही होते हैं। ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं उठो, ये नहीं करो, ये नहीं देखना चाहिए, नजर नीचे करो, मुंह से पाइप निकालो, ये करो वो करो, पूरी जो लैंग्वेज है ना वो सारी की सारी नॉर्मेटिव है। और जिसे इंसान सबसे ज्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया, इंसानी तहजीब का जो तुर्रा इम्तियाज है वो उसकी खैर और शर के बारे में तरजीहात है। इसी की बुनियाद पर वो जायज और नाजायज और सही और गलत और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए के निजाम के ऊपर ही उसका माशरा खड़ा हुआ होता है, उसकी रिवायात खड़ी होती है, उसकी तहजीब खड़ी होती है, उसकी तमद्दुन खड़ा होता है, उसकी बुनियाद पर उसका कानून खड़ा हुआ होता है, उसकी बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज खड़े होते हैं, सब कुछ उसके ऊपर खड़ा होता है। ये भाई क्या बता रहे हैं, यही है असल झगड़े की जड़। लिहाजा उसको तो आपको जो कर रहे हैं करने दो। जब आप आओगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो दो चीजों को आपको क्या करना है, ब्लॉक। पहली, व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी, द नॉर्मेटिव साइड शुड बी ब्लॉक्ड। ये नहीं कि वो हमेशा के लिए छोड़ दी। जब आप किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने जाओगे, जब किसी फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करने जाओगे, जब किसी क्रीचर को, कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने जाओगे, जब किसी ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज है, तो तुम्हें क्या करना है, ये सवाल नहीं उठाना कि ये कैसे होना चाहिए, सवाल ये कि ये कैसे है। डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, पॉजिटिविस्टिक होना चाहिए। और किस चीज को फरामोश करना है, इस चीज को कि कैसे होना चाहिए। जब तुम्हें यह पता चल जाए कि हकीकत क्या है, फिर यह सवाल तुम उठा लेना, लेकिन वो साइंस का सवाल नहीं होगा, वो एथिक्स का सवाल होगा, इखलाकियात का सवाल होगा। वो साइंस के स्कोप से बाहर है, साइंस के डोमेन से बाहर है। इसलिए साइंस दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिविस्टिक साइंस, जिसे हम उर्फे आम में साइंस कहते हैं, जिसके लिए जर्मन वर्ड है वेसेनशाफ्ट, वेसेनशाफ्ट। और एक है नॉर्मेटिव साइंस, उसे हम कहते हैं इखलाकियात, वो साइंस के दायरे से बाहर है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस। साइंस आपको ये नहीं बताती कि हकीकत को होना कैसे चाहिए, साइंस ये बताती है हकीकत क्या है। और वो कहती है कि वो तुम उस वक्त देख पाओगे जब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीछा छुड़ाना पड़ेगा अपनी प्री सपोजिशन से, और पीछा छुड़ाना पड़ेगा अपने खैर और शर के मियारात से। ये जितनी भी आपको नागवार गुजरे, ये मैं नहीं बता रहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने साइंस के मॉडलिंग की डेवलप किया, एस्टैब्लिश किया, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने रिमार्केबल डिस्कवरीज बाद में करके दुनिया को दिखाई। तो पहली चीज तो ये आप याद रखें, ये इसने शुरू में ये डिस्कस नहीं किया, इसको उसने छेड़ा है, लेकिन उसने तेजी से गुजरा है इसको, लेकिन ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि वो ये अस्यूम करता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। आमतौर पर ये वो लोग अपने स्कूल्स वगैरह के लेवल के ऊपर ये बात पढ़ा देते हैं अपने बच्चों को, सही है, ए लेवल्स वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि साइंस को वो प्री सपोजिशन लेस अप्रोच टू अंडरस्टैंड रियलिटी, एंड यू हैव टू एब्सटेन द नॉर्मेटिव साइड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू अप्रोच द नेचर थ्रू नॉर्मेटिव स्पेक्टिकल्स, your approach is going to be colored. If your approach is going to be colored, you will never ever be able to understand the reality as it is. So, pehli cheez ye ki agar aap positivistic ho jaye, yani ki presuppositionlessly approach kare, to phir aapke liye mumkin ho jayega ki wo facts ko waisa hi dekh sake jaisa ki fact hai, हकीकत को वैसा ही देख सके जैसा कि है। तो फैक्ट की जो डेफिनेशन ली जाती है साइंस के अंदर वो क्या है, फैक्ट इज समथिंग विच एग्जिस्ट एज इट्स ओन राइट इंडिपेंडेंट ऑफ माय प्रेफरेंसेस एंड डिजायर्स। व्हाट इज फैक्ट, फैक्ट इज समथिंग विच सबसिस्ट बाय इटसेल्फ, इट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ एंड इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ, and it is independent of my preferences and desires. Jungle ke andar jo kuch bhi ho raha hai, wo agar aap observe karoge, to jungle ke andar normatively act nahi kar rahe hote, positively act kar rahe hote jandar. Aur uske andar jo kuch bhi ho raha hota hai, उसको अगर आपने नॉर्मेटिव स्पेक्टेकल से देखा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। फिर आप तकसीम करोगे जानवरों के अंदर, ये गंदे जानवर हैं, ये अच्छे जानवर हैं, ये शरीफ जानवर हैं, ये बुरे जानवर हैं, इस जानवर को मारो, इस जानवर को छोड़ो। लेकिन साइंस कहेगी नहीं 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 नहीं, जानवर को, आपको जानवर को देखना है जो जानवर कर रहा है। अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें अपनी प्री सपोजिशंस को भी साइडलाइन करना पड़ेगा और अपने नॉर्मेटिव स्टैंड को भी साइडलाइन करना पड़ेगा। तो अगर एक साइंटिफिक माइंड जब जाएगा जंगल के अंदर, तो जंगल के अंदर अगर उसने देखा कि एक घोंसला है, उसके अंदर बच्चे हैं, और एक बच्चा जो है थोड़ा बड़ा चूजा जो है छोटे चूजों को सर से मार मार के मार मार के मार मार के घोंसले से नीचे गिरा दिया, तो अगर आप लोग होते उस जंगल में तो आप क्या करते, आप क्या करते?
उसको
हाँ, तुम रोकते, आप क्या करते भाई?
गिरा
देते आप? नहीं, स्टडी नहीं, आप अभी ऐसे यहाँ से अभी चले गए जंगल में, ऐसे ही घूम रहे थे आप,
तो
उठा उठाई क्या करते? उठा के क्या कहीं और आप आपके घर ले जाओगे? चलो यार पाल लूंगा इसको, देखते हैं पता नहीं क्या निकले। हाँ आप भाई, आप बचाने की कोशिश करोगे और उसको उसकी देखभाल भी करोगे, ठीक है जी? आप आप
देखते रहेंगे क्या होता
होगा, आप
सिचुएशन देखिए वो कर तो रहा है ताकि इसको ट्रीट कैसे किया
जाए। नहीं, बच्चे बच्चे का क्या होगा, बच्चे बच्चे का क्या करना है, बच्चे छोड़ दोगे? देखते रहो, वही ना,
वो
गिरा दिया उसने। अभी बच्चा जैसे ही नीचे गिरेगा ना जंगल में, वो कराची तो नहीं है, फौरन चूटी हमला कर देंगे उस पर। वो जैसे ही गिरेगा ना, इधर उधर से आवाज पैदा होते ही आवाज के जो स्ट्राइक होती है ना, चूटियों को पता चल जाता है क्या चीज गिरी है। चूटियों के जो सेंस होती है, उनकी कैपेसिटी होती है, उनको ये भी पता चल जाता है कि ये पत्ता गिरा है, उन्हें यह भी पता चल जाता है फल गिरा है, उन्हें यह भी पता चल जाता है जानवर गिरा है, जिंदा गिरा है या मुर्दा गिरा है, यही पता चल जाता है उसको। गिरने से, स्ट्राइक करने से उसे पता चल जाता है। ये सलाहियत होती होंगी और ठक से निकलेंगी और लपट जाएंगी बच्चे को, आप कुछ नहीं कर सकोगे। फिर आप क्या करोगे? नहीं, चूटियां तो चिपट गई ना उसकी, चूटियों को निकालोगे तो चूटियां मर जाएंगी, मारना पड़ेगा चूटियों, मार दोगे चूटियों को? चूटियों को मारोगे या नहीं? नहीं, हटा हट नहीं रही हूं, काट रही है, खेचो तो उसका मुंह टूट जाए, मारोगे या नहीं?
एक को बचाने के लिए दूसरों को मारने वाली
तो छोड़ दो, ठीक है? आप
देखेंगे उसको रोक ले,
आप भी देख भी नहीं रहे, इतना इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, चीज की जान जा रही है, वो नहीं देख, आगे बढ़ गए तुम, देखते रहो, मतलब देखोगे तो ना तमाशा, ठीक है? तो जो देखो, आप देखो, ज्यादातर इंसान जो है ना बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो चीजों को अप्रोच करते हैं नॉर्मेटिवली, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि इंसान के इल्म जानने के अमल में सबसे बड़ी रुकावट मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर्स ने डिटरमिन किया तुम्हारी एथिक्स है, यही तुम्हें नहीं जानने देता, तुम रुक जाते हो और तुम कहते नहीं नहीं ये तो गलत बात है। लेकिन साइंटिफिक अप्रोच ये होगी, पॉजिटिविस्ट अप्रोच, प्रीसपोजिशन, आप प्रीसपोजिशन लेसली जब जाओगे तो आप ये देखोगे कि ये क्या कर रहा है और हाउ थिंग्स happen in this world. लिहाजा आप देखोगे कि कर क्या रहा है वो. तो वो क्या हो रहा है कि जो बड़ा बच्चा होता है ना वो छोटे बच्चों को तीनों को नीचे फेंक देता है, तीनों को नीचे फेंक देता है ताकि जब मां खाना लेके आए तो खाना सिर्फ एक को ही मिले. और जो नीचे गिरते हैं ना बच्चे, जैसे ही वो नीचे गिरते हैं उनको घेर लेती है चूटियां और खा जाती है, वो नहीं बचते फिर. तो जो जो ऑब्जर्व कर रहा होगा एक बायोलॉजिस्ट, वो अपने आप को क्या करेगा, डिसएसोसिएट कर लेगा पर्सनली विद द फिनोमेना. डिसएसोसिएट कर, जैसे ही डिसएसोसिएट करेगा अपने आप को फिनोमेना से, वो कहेगा मैं एक ऑब्जर्वर हूं. इस नेचर के अंदर मैं रोजाना बच्चे नहीं बचा सकता. सवाल यह है कि मुझे करना क्या है. मुझे करना यह है कि मुझे देखना है कि इस चूजे के साथ होता क्या है. थोड़ी देर बाद चूजा हड्डियों के पंजर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मां आएगी अपने बच्चे को खूब आवाजें देगी और जो एक मोटा बच्चा बैठ रही होगा उसी खबीज को खिला के फिर चली जाएगी. उसको अब तुझे तुझे मार दिया अपने भाई को, चल तू भी निकल निकल जाए इस घर से, आ करती हूं मैं तुझे. वो ये नहीं कहेगी, वो उसे खिलाना शुरू कर देगी. सही है. तो इससे जो है आप डराइव करो डार्विनियनिज्म या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपके ऊपर है. बुनियादी तौर पर अगर आपने सपोजिशंस के साथ गए और खैर और शर के उसूल के साथ आप नेचर को अंडरस्टैंड करने गए, तो जो रिगरस नहीं रहोगे आप और आप के जो खैर और शर के तस्वूर आते हैं आपको हकीकत को समझने नहीं देंगे जैसा कि हकीकत है, बल्कि हकीकत को आप वैसा समझना चाहोगे जो खैर और शर की हुदूद और कयूद के साथ आप नेचर को समझना चाहते हो या हकीकत को समझना चाहते हो. इसको बुनियादी रुकावट समझता था अर्ली डिस्कोर्स ऑफ साइंस और आज तक अर्ली डिस्कोर्स ऑफ साइंस के इस उसूल से साइंटिफिक कम्युनिटी अटैच्ड है. अटैच्ड है क्योंकि वो ये कहते हैं कि यू शुड डिसोसिएट योरसेल्फ इन इन एन इनपर्सनल मैनर एंड रिलेट योरसेल्फ टू द नेचर बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉजिटिविस्टिक अप्रोच. लिहाजा ये तय करना था कि भाई फिर हकीकत को जैसा है अगर वैसा ही बयान हम कैसे करें. हकीकत को हकीकी मायनों में बयान करने का उसूल क्या होना चाहिए. तो उसके लिए जाहिर है कि ये जो फैक्ट है इसको बयान करने के लिए आपके पास कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए. सही है. तो एक आम आदमी जो स्टेटमेंट्स पास करता है वो दो तरह की होती है. आमतौर पर इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है. मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं ज्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना करूं और कोशिश करूं चैप्टर के करीबी हमरे. दो तरह यानी कि किसी भी फैक्ट को जब आप स्टेटमेंट की सूरत में बयान करोगे तो या तो आप दोगे सब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट या ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट. हा मिसाल के तौर पे यहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ है और मैं इस पत्थर को उठाता हूं और मैं कहता हूं दिस स्टोन इज हैवी और दूसरा ये भाई उठाते हैं और कहते हैं दिस स्टोन सीम्स टू मी हैवी. तो दोनों में फर्क क्या है. सही है. इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि जो हैवीनेस ऑफ द स्टोन है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द सब्जेक्ट. अगर हैवीनेस ऑफ एन स्टोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट सो इट डजेंट मैटर वेदर इट हैज बीन डिटरमिन्ड बाय ए बी और सी और वहाब आमिर और असलम, इससे फर्क नहीं पड़ता. या ये کہ اگر سبجیکٹ کے فرق سے پتھر کی وزن میں کمی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ سبجیکٹو ہو جائے گا, صحیح ہے. لیکن بہرحال اسٹون چونکہ ایکسٹرنل ہے, ایکسٹرنل ٹو می, لہذا چونکہ وہ ایکسیسیبل ہے, ہم سب نے اس اسٹون کو اٹھا کے دیکھا, تو ہم سب نے جب اٹھایا تو ہم سب کو وہ بھاری لگا, ہم سب کو ہی بھاری لگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہیوینیس آف دس اسٹون کمپیل اس ٹو ایکنالج اٹس ویٹ اور اٹس ہیوینیس. تو ہم کہیں گے یہ باتیں ہو گئی کہ یہ اسٹون صرف میرے لیے ہیوی نہیں ہے, ایکس کے لیے ہیوی نہیں ہے, وائی کے لیے ہیوی نہیں ہے, سب کے لیے ہیوی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک تجربہ ہم سب کو ہوا, لیکن ہم سب کو جو تجربہ ہوا ہم سب کو ایک جیسا تجربہ ہوا. اس کا مطلب ہے وہ کہ تجربہ انسان اپنے جسم کے اندر ہی کرتا ہے. آپ کا تجربہ آپ کے جسم میں ہو رہا ہے, میرا تجربہ میرے جسم میں ہو رہا ہے. تو تجربہ بنیادی طور پر سبجیکٹ ڈیٹرمنڈ ہی ہوتا ہے, لیکن اگر سب کا تجربہ ایک جیسا ہو رہا ہے اور سب لوگ ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو مرکز اور محور ہے یا اس کا جو محرک ہے وہ ایکسٹرنل ہے, آبجیکٹیو ہے, ہم سے باہر ہے, انڈیپینڈنٹ آف دا سیلف ہے. اس وجہ سے وہ جملے جو حقیقت سے متعلق بیان کیے جائیں اور سب کے تجربے میں یکساں طور پہ آ جائیں, ان جملوں کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ. سمجھ میں آگے بات؟ اور ایک اور ایگزامپل یہ ہے, there is one white board in this room, یہ آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اچھا, یہ جو اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے وائٹ بورڈ ان دس روم, اس کی بنیاد کیا یہ ہے کہ آئی سی اے وائٹ بورڈ ان دس روم, دیر فور دیر از ون وائٹ بورڈ ان دس روم, اور وائٹ دیر از اونلی ون وائٹ بورڈ ان دس روم, دیٹس وائی آئی سی ون وائٹ بورڈ ان دس روم. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے دیکھا وائٹ بورڈ اس لیے ایک وائٹ بورڈ ہے, یا ایک وائٹ بورڈ ہے اس لیے میں ایک ہی دیکھ رہا ہوں؟ دونوں کا سمجھ میں آ گیا. تو آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ کیا ہوگا اس کے حساب سے؟ یہ وائٹ بورڈ ایک تھا اس لیے میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ وائٹ بورڈ ایک ہی ہے, صحیح ہے. تو دیر از اے وال ان دس روم, دیٹس وائی آئی ایم ایکسپیرینسنگ دس وال, اور آئی ایم ایکسپیرینسنگ اے وال, دیٹس وائی دیر از اے وال ان دس روم. کیا مطلب؟ پہلا والا یہ ہے کہ دیر از اے وال ان دس روم, دیٹس وائی آئی ایم ایکسپیرینسنگ دیٹ وال, دیٹ از این آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ. دیوار میرے وجود سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے, میں اس کو دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں اس سے دیوار کا ہونا ثابت نہیں ہوتا. اگر میں اندھا ہو گیا تب بھی دیوار رہے گی, اور میں اس کو چھو نہیں پایا تب بھی دیوار ہوگی. تو آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ جو ہوتے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ اگر آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ کو بنیاد بنایا جائے, جس کے لیے چارمرز نے جو ٹرم استعمال کی ہے وہ آبزرویشن اسٹیٹمنٹ ہے. آبزرویشن اسٹیٹمنٹ, ہاں آبزرویشن اسٹیٹمنٹ ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں اچھائی برائی, صحیح غلط, میری اسمپشنز میٹر نہیں کرتی, کیونکہ کمرے میں دیوار کا ہونا میری چاہت سے اخذ کردہ نہیں ہے, میرے خیر اور شر سے اخذ کردہ نہیں ہے, میری اخلاقیات سے اخذ کردہ نہیں ہے. یہ میں نے تجربہ کیا اور میں اکیلا تو نہیں تھا وہاں پر, اور 50 لوگ بھی تھے انہوں نے تجربہ کیا, لہذا یہ جب میں ریفر کروں گا اس اسٹیٹمنٹ کو کیا کہیں گے؟ آبزرویشن اسٹیٹمنٹ. سو آبزرویشن اسٹیٹمنٹ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو جس طرح آپ کے تجربے کی گرفت میں آ رہی ہے اسی طرح ہر نارمل ہیومن بینگ کے تجربے کی گرفت میں آئے گی, اور اگر اس نے کوئی فالٹ لائن ہے وہ دوسرا ڈیٹیکٹ کر دے گا. और जब वो डिटेक्ट करेगा तो दूसरे सब उससे एग्री करेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। अगर मैं इंसिस्ट करना शुरू करूं, देर आर फोर जो है वाइट बोर्ड्स इन दिस रूम, और ये भाई तय करें कि देर इज ओनली वन वाइट बोर्ड इन दिस रूम, तो आप ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट, दोनों ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट को कंफर्म और डिसकन्फर्म कर सकते हैं अपने पांच हवास खमसा की रोशनी में या नहीं कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट की बुनियाद पर जो सच्चाई इस्टेब्लिश होती है आम इंसानों के दरमियान, उसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट थियरी ऑफ ट्रूथ। कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रूथ के हिसाब से ये बात सच्ची है कि इस कमरे में एक ही व्हाइट बोर्ड है, और इसे इस जुमले को देर इज वन व्हाइट बोर्ड इन दिस रूम, ये जुमला और ये व्हाइट बोर्ड वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, स्टैब्लिश हो गया कि ये एक सच है। बात समझ में आ गई? तो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स जो होती थी, जब ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट से आप कायनात को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो इम्कान इस बात का कम होगा कि वो सपोजिशंस के साथ होंगी और नॉर्मेटिव होगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यानी कि अगर फर्ज किया कि ये दो भाइयों में अभी बड़े आराम से बैठे हुए, लेकिन किसी बात पर लड़ाई हो जाए और दोनों लड़ रहे, खूब लड़ा लड़े लड़े और इसने एक को बेहोश कर दिया, मार के नॉकआउट कर दिया उसको, तो हम लोग सब बोझे बताएं क्या हुआ इस कमरे में, तो बोलने बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, वो साहब साहब पढ़ा रहे थे, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसके नाक पे घूंसा मार दिया, उसका चश्मा तोड़ दिया और वो बेहोश हो गया, और फिर प्रोग्राम सब खत्म हो गया, बहुत गलत हुआ, आइंदा कभी इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट है? क्यों नहीं ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट? क्योंकि बहुत सारे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। भाई एक भाई ने दूसरे भाई के नाक पे घूसा मारा और वो बेहोश हो गया, ये एक ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल जजमेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल जजमेंट में आपने कोई नॉर्मेटिव क्लेम नहीं किया, और आपने कोई असम्पशन नहीं दी, और आपने कोई प्रीसपोजिशन नहीं दी, और आपने रिफ्रेन किया आपने आपको किसी भी किस्म के जजमेंट को पास करने से, लिहाजा आपने फैक्ट को रेफर कर दिया, फैक्ट को। लिहाजा पहली जो उन्होंने बुनियाद बनाई कि भाई साइंस को एक्सप्लेन करें, साइंस को एक्सप्लेन करें। देखिए साइंस तो डेवलप होनी शुरू हो गई थी और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था, और कॉपरनिकस ने भी काम किया, और फिर कैपलर ने भी काम किया, और फिर गैलीलियो ने भी काम किया, और फिर न्यूटन ने भी काम किया, और बहुत ही रिमार्केबल काम किए दुनिया के अंदर। तो साइंस जो है वो बुनियादी तौर पर चैलेंज कर रही थी उन बड़े बड़े दावों को जो दुनिया में बड़े बड़े थिंकर्स ने कर रखे थे। मिसाल के तौर पर एरिस्टोटल का ये ख्याल था, या एरिस्टोटेलियन जो कॉस्मोलॉजी थी वो ये कहती थी कि जो चांद है वो परफेक्ट स्फेयर है, परफेक्ट बॉल की तरह है, गोल है वो और परफेक्ट है, और ये दो दुनियाओं के बीच का एक वो है डिविजन को शो करता है सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट में, चांद से ऊपर की दुनिया और चांद से सब लूनर स्पेस और अपर लूनर स्पेस, हाँ दोनों को, और बीच में वो है चांद, सही है, ऐसा समझता था एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ये कहता था कि चांद जो है वो परफेक्ट स्फेयर है, जिस तरह बॉल होती है परफेक्ट स्फेयर, क्रिकेट की बॉल परफेक्ट गोल होती है, तो ऐसा समझता था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बना के जब देखा तो रहेगा चांद पे तो घड़े हैं भाई, पहाड़ है, घड़े है, ये है वो है, तो है वो तो कहता सारी की सारी इसके ऊपर खड़ी हुई थी पूरी की पूरी, धड़ाम से नीचे गिर गई, क्योंकि जो स्टेटमेंट वो दे रहा था वो ऑब्जेक्टिव इंपेरिकल जजमेंट था, ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट थी। और जब ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट आ जाएगी तो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट आते ही जो आपने बड़े बड़े दावे किए होते हैं धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो साइंस ने क्या किया, बहुत सारी चीजों को या साइंटिफिक अप्रोच ने बहुत सारे बड़े बड़े दावों को की बेखतनी करनी शुरू कर दी थी, चैलेंज करना शुरू कर दिया था। इसके नतीजे में क्या हुआ कि वो जो इल्म का जोर और रोब और दबदबा था एरिस्टोटल का या क्रिश्चियन स्कोलास्टिक्स का वगैरह वगैरह का, वो जब ब्रेक होना शुरू हुआ तो लोगों की तवज्जो साइंस एज ए मेथड, साइंस एज ए मेथडोलॉजी के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया कि भाई बताओ तो ना कि साइंस इन इटसेल्फ है क्या, व्हाट एक्चुअली साइंस इज। सही है, तो इस सवाल को टेकअप किया, एक तो थी साइंटिफिक प्रैक्टिस और एक थी साइंस की थियरी कि साइंस क्या होती है और एक साइंस क्या करती है। साइंस क्या कर रही थी, वो बायोलॉजी में भी कर रही थी और केमिस्ट्री में भी कर रही थी और एस्ट्रोनॉमी में भी कर रही थी और यू नो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कर रही थी और बहुत सारी चीजें। लेकिन जब लोगों से पूछा कि भाई थ्योराइज तो करो साइंस को, हम किस चीज को साइंस कहें और किस चीज को नॉन साइंस कहें, किस अंडरस्टैंडिंग को साइंटिफिक कहें किस अंडरस्टैंडिंग को नॉन साइंटिफिक कहें, इसके ऊपर सीरियस डिबेट्स जब शुरू हुई तो उसके अंदर जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट दिया वो था फ्रांसिस बेकन का। सही है, अब फ्रांसिस बेकन ने जो व्यू दिया साइंस का उसे हम आम तौर पे पहला इनिशियल ऑथेंटिक व्यू ऑफ मॉडर्न साइंस हम कह सकते हैं। और बेकन ने कहा कि साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, यानी कि साइंस में और नॉन साइंस में जो बुनियादी फर्क होगा वो ये कि साइंसी इल्म की जो बुनियाद होगी वो किसके ऊपर होगी, ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट, साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन। और जो पहला नाइव इंडक्टिविज्म जिसे हम कहते हैं, नाइव इंडक्टिविज्म या सिंपल साइंटिफिक व्यू जो बेकेनियन एनालिसिस से निकलता है, वो फोर स्टेप पर बेस करता है। और वो फोर स्टेप ये कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड बेसिकली स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन जनरलाइजेशन। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, जनरलाइजेशन। ऑब्जर्वेशन आप लेंगे, ऑब्जर्वेशन आपको मजबूर करेगी एक नजरिया कायम करने पर या एक हाइपोथेसिस बनाने पर। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और उस टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम को आप एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए रिविजिट करोगे, रेप्लिकेट करोगे और उसमें कॉजल कनेक्शन तलाश करोगे बार 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 और फिर कहीं जाकर आप जनरलाइजेशन कर दोगे। इस बेकेनियन व्यू को हम सिंपल साइंटिफिक व्यू भी कहते हैं या नाइव इंडक्टिविज्म भी कहते हैं। नाइव इंडक्टिविज्म या सिंपल साइंटिफिक व्यू ऑफ साइंस जो है वो इनिशियली फोर स्टेप पर बेस करता था और वो ये कहता था कि साइंस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करती है और उस ऑब्जर्वेशन को अपने आप को बचाना होता है, उस ऑब्जर्वेशन के दौरान अपने आप को बचाना होता है सपोजिशंस के साथ भी और नॉर्मेटिव पोजिशन के साथ भी। ये अभी हमने यानी कि इसने चार्मर्स ने अभी नहीं डिस्कस किया, बाद में इसको डिस्कस करेगा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन मुझे इसी में कवर करना है इसलिए मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। लेकिन अस्यूम किया गया, शुरू में ये अस्यूम किया गया कि ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट प्री सपोजिशन लेस होता है क्योंकि जो देखा वही बयान कर दिया, जो देखा आपने वो बयान कर दिया। तो जब देखा और बयान कर दिया तो इसकी बुनियाद पर आप एक हाइपोथेसिस बना सकते हो, एक उसूल बना सकते हो और एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बना सकते हो, फिर उसको सामने रख के आप बार 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 उसको नए बार बार आप ऑब्जर्व करते चले जाओ और जब आप उनको बार बार ऑब्जर्व करते रहोगे तो उसकी नतीजे में आप एक जनरलाइजेशन करोगे। ये नाइव इंडक्टिविज्म का जो बुनियादी जो खदोखाल थे वो बयान किए इसने, क्या कहते हैं, फ्रांसिस बेकन ने। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये मैंने एक आपको बताया, अभी मैं इसका तज्जिया करता हूं कि ऐसा वो कह क्यों रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे वो। अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मैंने चार बातें आपको बताई कि साइंस का जो तस्वुर था बुनियादी तौर पर वो फलसफे के अंदर भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, पहली बात। दूसरी बात आपको ये बताई कि वो जो तस्वुर था वो तकाजा करता था इंसान से कि वो रिगरसली चीजों को जाने, और रिगरसली जानने के लिए जरूरी था कि वो सपोजिशन से अपना दामन छोड़ाए, और सपोजिशन की जो सबसे सबसे ज्यादा लेजिटिमेट पेनिट्रेशन थी ह्यूमन नॉलेज के अंदर वो उसकी नॉर्मेटिव साइड थी। लिहाजा इल्म जुड़ा हुआ था किसके साथ? इखलाकियात के साथ। तो इखलाकियात और इल्म का जो गठजोड़ था, इसकी बुनियाद पे जो इल्म था वो हकीकत का नहीं था बल्कि हकीकत को कैसा होना चाहिए इसका था। इससे दामन छुड़ाने की निशानदेही जो थी वो अर्ली मॉडर्न थिंकर्स ने करनी शुरू कर दी थी, और बाद में कहीं जाकर इसको साइंस ने पॉजिटिविज्म की बुनियाद पर इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिर मैंने आपको दूसरी बात ये बताई कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है उसको बयान करने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स को रेफर करना होता है, बयान करना होता है। तो फैक्ट्स को जब आप बयान करते हैं तो वो सब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट भी हो सकता है या ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट भी हो सकता है। जैसे तुम कहते हो कि मेरे दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल ने जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने, तो ये सब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट है या ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट है? आप लोगों ने कभी इस तरह की बात कही है किसी के दर्दे दिल आपने जगाया है? नहीं, आपने इस तरह की कभी किसी से नहीं की। अगर आप कभी कह भी दो तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दुनिया यकीन नहीं करती। चलो हट्टा कट्टा तो है, कहां से दर्द देकर हो गया है? क्यों क्यों जो हमें बेवकूफ बना रहा है, क्यों ड्रामे कर रहे हो? तो अब आप दर्द जिगर को या दर्द दिल को वो नहीं कर सकते डिमॉन्स्ट्रेट है। इसी तरह आप ख्वाब में किसी का चेहरा किसी और को नहीं दिखा सकते, सही है ना? तो लेकिन अगर फिजिकल पेन भी तुम्हारे जिस्म में हो रहा है, फिजिकल पेन भी तुम्हारे जिस्म में हो रहा है तो दूसरे के लिए एक्सेसिबल नहीं है वो। तो चूंकि दूसरे के लिए उस तरह एक्सेसिबल नहीं है जिस तरह इस पत्थर को हमारे लिए उठाना आसान है या एक्सेसिबल है, इसलिए सब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट को साइड में रख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट को हम मैटर ऑफ फैक्ट के तौर पे ले सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट या ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टेटमेंट से हम साइंस की इब्तिदा कर सकते हैं। और साइंस की इब्तिदा को अगर ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट से ले तो उसूलन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन और जनरलाइजेशन, ये चार चीजें अगर मिल जाएंगी तो हम उस तज्जिए को या उस अंडरस्टैंडिंग को या उस कुलिये को या उस नजरिए को या उस जनरलाइजेशन को जो आपने की साइंटिफिक मान लेंगे, सही है? ये फ्रांसिस बेकन का नाइव इंडक्टिविस्टिक आर्गुमेंट। अब इसमें दो तीन चीजें जो कि अस्यूम करता है वो, मैं उनकी निशानदेही करता हूं। अभी यहां तक कोई बात आपको पूछनी है तो पूछ लें, 5-10 मिनट में बिल्कुल एक्सप्लिसिट क्वेश्चन होना चाहिए।
सर बस ये पूछ रहा था कि जो ऑब्जर्वेशन जो होती है उसके अलावा कोई स्टेटमेंट देगा तो वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं होगी, यानी इसके लिए वास्तविक समस्या से कोई
नहीं। और कौन सी चीज आप महसूस कर रहे हैं?
इंपेरिकल का मतलब आप छोटे से थे उस वक्त जब मैंने पढ़ाया था वो कोर्स, तो उसमें मैंने आप लोगों को इंपेरिसिज्म कराया था, और उसमें इंपेरिकल स्टेटमेंट कैसी, इंपेरिकल स्टेटमेंट कैसी होती है, इंपेरिकल स्टेटमेंट या एम्पेरिकल स्टेटमेंट ए पोस्टीरियोरी होती थी। अगर आपको याद हो ए पोस्टीरियोरी का मतलब ये बताया था मैंने आपको कि पहले तजर्बा फिर अवेयरनेस। तो एम्पेरिकल अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज पढ़ा था यहाँ पर, तो आपने तो जरूर ही पढ़ा था। तो इसका मतलब यह है कि इंपेरिकल स्टेटमेंट अगर किसी में लगी हुई है तो वो नेसेसरली तजर्बे की बुनियाद पे होगी, सही है, हार्ड कोर फिलोसफी, ठीक है। तो वो कभी भी वो रैशनल स्टेटमेंट जो होती है वो कैसी होती है, वो ए प्रायरी होती है, ए प्रायरी, ये और ए प्रायरी जो होगी वो रैशनल स्टेटमेंट होगी। इंपेरिकल अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो नेसेसरली यू शुड रेफर द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज कोर्स, और उसके अंदर हमने ये किया था। अब इसके अंदर उसने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, अगर आप लोग जब इसको देखेंगे जब भी है तो उसके अंदर ये चार्ट बना हुआ है, सही है। तो ये चार्ट मैं बनाकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, सही है, इससे जो इनका क्वेश्चन है ना वो भी टेकअप हो जाएगा। तो इससे ये ना समझें कि ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट जब इंसान देता है तो वो अकल से पैदल हो जाता है, जैसे ये कह रहा है। जब आप कोई एम्पेरिकल जजमेंट पास करते हैं तो वो स्ट्रक्चर ऑफ साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन को मुमकिन बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन को। लेकिन ऑब्जर्वेशन जब आ जाती है आपके पास तो उसके बाद आपको अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं रीजनिंग। बगैर रीजनिंग के साइंस नहीं चलती। साइंस जब, अगर आपको याद हो मेरा जुमला क्या था, साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, इट स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट तो करती है लेकिन इसके बाद ये स्टेप और ये स्टेप और ये स्टेप एम्पेरिकल नहीं होता, रैशनल होता है, यानी कि इसमें रीजनिंग इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। और इंसान जब रीजनिंग करता है तो दो तरह की रीजनिंग कर सकता है, वो इंडक्टिव रीजनिंग भी कर सकता है और वो डिडक्टिव रीजनिंग भी कर सकता है। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग को हमने एट लेंथ डिस्कस किया है, सही है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में किया ना, इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग एट लेंथ हमने डिस्कस किया। लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जो पहले नहीं देख रहे थे तो इसलिए मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताता हूं। इंडक्शन को हम तफसील से डिस्कस कर लेंगे, डिडक्शन को हम बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी कि सच जो होता है, सच्चाई, उसको आप फॉर्मली भी अचीव कर सकते हो और मटीरियली भी अचीव कर सकते हो। इसका मतलब है कि ट्रूथ फॉर्मल ट्रूथ भी हो सकता है, फॉर्मल ट्रूथ भी हो सकता है और मटीरियल ट्रूथ भी हो सकता है। फॉर्मल ट्रूथ कहते हैं ट्रू बाय रूल्स, यानी कि सच उसूलों के मुताबिक, ट्रू बाय रूल्स, हाँ, ट्रू बाय रूल्स। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या करती है, डिडक्टिव रीजनिंग हमें अवेलेबल डेटा से कंक्लूजन ड्रॉ करने की फॉर्मल जस्टिफिकेशन देती है, यानी कि इंसान की एक ऐसी अकली सलाहियत जो उसको इन्फर करने में मदद देती है। इन्फर करने का क्या मतलब है कि आपके पास कुछ इस डेटा है उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लो। ये कुदरती तौर पर इनबिल्ट सलाहियत इंसान के अंदर होती है। इसे जब आप एकेडेमिकली अप्रोच करते हैं तो इसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। लेकिन फर्ज करें कि आपने जिंदगी में कभी डिडक्टिव रीजनिंग नहीं पढ़ी, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कुदरती तौर पर इन्फर करने की सलाहियत मौजूद है। मिसाल के तौर पे ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, ए इज इक्वल टू सी। ये जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ये अगर आपने फलसफा नहीं पढ़ा हुआ, लॉजिक नहीं पढ़ी हुई, डिडक्शन नहीं पढ़ा हुआ, तब भी आप ये क्यों कर पाओगे, क्योंकि ये सलाहियत आपके अंदर मौजूद है इन्फर करने की, और इसी को इन्फरेंस कहते हैं कि इंसानों को अगर डेटा दे दिया जाए तो उसमें से कंक्लूजन वो खुद ही निकाल सकते हैं। अगर वो डिडक्टिव रीजनिंग को पढ़ेंगे एट लेंथ एनालिसिस करेंगे तो उनकी ये सलाहियत पॉलिश हो जाएगी, लेकिन अगर वो ये नहीं भी करें तब भी उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है, सही है। लिहाजा अगर फर्ज किया कि आप कुछ ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स आपके सामने हो, तो उन ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स की मदद से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, सही है। मिसाल के तौर पे ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट ये है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ये आपके ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि आपने जितने भी इंसान आज तक देखे हैं वो एक खास वक्त में आके मर जाते हैं, तो आपके तजर्बे में ऐसा है कि इंसान मरते रहते हैं, सही है, सही है। तो किसी भाई ने ये जनरलाइजेशन की भी है, ऑल मैन आर मॉर्टल, हालांकि अभी आपने सारे मरे हुए आदमी नहीं देखे, लेकिन ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट आप ये दे सकते हो कि मर जाते हैं लोग। और आपने ये भी एक ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट है दैट आमिर इज अ मैन, सही है, आमिर एक ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट है, आमिर एक इंसान नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो इससे आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे, देयरफॉर आमिर इज ऑल्सो मॉर्टल, सही है। तो अगर फर्ज किया कि ये जो जुमला है, ये वाला जुमला ऑल के ऊपर है, तो आमतौर पर जो ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट होते हैं ना वो पर्टिकुलर होते हैं, तजर्बे की बुनियाद पर जो जजमेंट दिए जाते हैं ना वो पर्टिकुलर नेचर के होते हैं, वो जनरल नेचर के नहीं होते, सही है ना। यानी कि आपने तमाम इंसानों को तो मरा हुआ नहीं देखा ना, तमाम इंसानों को मरा हुआ देखा आप लोगों ने, हो सकता है आप ही वो इंसान हो जो कभी मरो ही नहीं, ऐसा हो सकता है तजर्बे की बुनियाद पे, तजर्बे की बुनियाद पे यकीन से आप कह सकते हो तजर्बे, क्योंकि हो सकता है आप कभी मरो ही नहीं, हमेशा ऐसे रहो, है
तजर्बा
नहीं, कौन किस चीज का तजर्बा नहीं हुआ, आप मरने का तजर्बा हो गया
नहीं,
हो सकता है नहीं आया ना मौत, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल मेन आर मॉर्टल ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट नहीं हो सकता। आमिर इज अ मैन, ये हमें नजर आ रहा है आमिर इंसान है, हम ये कह सकते हैं सम मैन आर मॉर्टल क्योंकि बहुत सारे कब्रिस्तान आबाद है, उनको हमने मरते हुए देखा, लेकिन इसकी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि आमिर उन्हीं इंसानों में से होगा जो मर जाए, बात समझ आ रही है। लिहाजा डिडक्टिव रीजनिंग ये बताएगी, इससे बहस नहीं करेगी कि ये सच है या ये सच है, डिडक्टिव रीजनिंग इस सवाल से बहस करेगी अगर ये दो सच हैं तो ये सच होगा। इसका मतलब ये हो कि डिडक्टिव रीजनिंग फॉर्म ऑफ द ट्रूथ से डील करेगी, मटेरियल ऑफ द ट्रूथ से डील नहीं करेगी। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग की सलाहियत ये है कि आप उसको डेटा दे दो वो आपको कंक्लूजन निकाल दे, लेकिन जो डेटा तुम दे रहे हो अगर वो सही नहीं हुआ तो कंक्लूजन गलत निकल जाएगा। फर्ज किया कि तुम जिंदा रहो और जिंदा ही रहते रहो, रहते ही रहो, रहते ही रहो, रहते ही रहो, ऐसे ही रहो, जिस तरह बाबा बुल्ले शाह बोलते हैं, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बागे बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। तो आप हैं अब मैं बुढ़ा होऊंगा, अब बुढ़ा होऊंगा, बुढ़े हो ही नहीं रहे तुम, वैसे के वैसे ही हो, हट्टे कट्टे जवान, तो कब तक रहोगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो जुमला है, ये वाला ऑल मैन आर मॉर्टल, इसके लिए भी तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, वरना फिर तुम्हारा जो नजरिया है या जो तुम्हारा सच है उसको क्या खतरा लाहक हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, कि तुमने जनरलाइजेशन कर दी। तो ये जो इस तरह के जुमले होते हैं ना, जनरलाइज स्टेटमेंट, इनको अखज करने के लिए आमतौर पर इंडक्टिव मेथडोलॉजी इख्तियार करते हैं, यानी कि मटीरियल ट्रूथ को एक्सेस करने के लिए आपके पास रीजनिंग का एक दूसरा तरीका होता है, इंडक्टिव रीजनिंग, समझे। और इंडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, ये वाला जुमला ऑल मैन आर मॉर्टल, ये तुम कैसे अखज करते हो। मिसाल के तौर पर तुमने एक जुमला देखा, तुमने देखा एक इंसान को ایک خاص وقت پر، ایک خاص جگہ پر، ایک خاص عمر میں مرتے ہوئے، صحیح ہے؟ تو تم نے ایک ڈیٹا بنایا، ڈیٹا، اے مین ایٹ پلیس ایکس ون ایٹ ٹائم ٹی ون واز مورٹل، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تم نے ایک بندے کو دیکھا جو ایک بوڑھا آدمی تھا، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، بوڑھا ہوا اور پھر وہ مر گیا، تو تم نے ڈیٹا لے لیا کہ بھائی ایک انسان مر گیا بھائی، جیسے فرضیہ گھر میں جا کے تم کو ارے بھائی وہ مر گئے، تو لوگوں نے ہاں تو کیا ہوا مر گئے، تو مرنا ہی تو ہے، مر ہی تو جاتے ہیں لوگ، تو لیکن آپ نے پہلی بار کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اپنا ڈیٹا بنایا، مین ایٹ پلیس ایکس ون ایٹ ٹائم ٹی ون واز مورٹل، پھر آپ نے دوسرا آدمی کو دوسری عمر کا، دوسرے جینیٹکس کا، دوسرے مذہب کا، دوسرے کلچر کا، وہ بھی مر گیا، مین ایٹ پلیس ایکس ٹو ایٹ ٹائم ٹی ٹو واز آلسو مورٹل، پھر آپ نے ایک تیسرا آدمی دیکھا جو دوسری جینڈر کا تھا، عورت تھی اور اس کی عمر کم تھی اور وہ بھی مر گئی، صحیح ہے؟ ایکس تھری ایٹ ٹائم ٹی تھری واز آلسو مورٹل، پھر چوتھا آپ نے دیکھا، پھر پانچواں دیکھا، بہت سارے ہزاروں انسانوں کو آپ نے ڈائریکٹلی آبزرو کیا۔ ڈیڈکشن میں آپ کیا کرتے ہو، جو ڈیٹا ہوتا ہے اس سے کنکلوژن ڈرا کرتے ہو، لیکن چونکہ ہم نے تمہیں کیا بتایا، سائنس کے اندر پری سپوزیشن لیس چلنا ہے، لہذا پہلے سے ہم نہیں مانیں گے کہ یہ ڈیٹا ٹھیک ہے نہیں، تو ہمیں ڈیٹا جنریٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ آبزرویشن میں جانا پڑے گا، اور ڈائریکٹ آبزرویشن جاننے ڈیڈکٹیو ریزننگ میں چونکہ جرنلائز اسٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ٹرو ہیں یا ان ٹرو ہیں، اگر ہم نے اس کو ایکسکویٹ نہیں کیا تو پھر وہی ہو جائے گا پرابلم کہ بھائی یہ تو آبزرویشن، یہ تو نارمیٹو ہے یا یہ جو ہے جھوٹ ہے یا یہ ایسے ہی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا بہت ساری اسٹیٹمنٹس لینے کے بعد، ہزاروں انسانوں کا ڈیٹا جمع کرنے کے بعد، تم نے یقین کے ساتھ کہا، پھر تم نے آخر میں مین ایٹ پیس ایکس این ایٹ ٹائم ٹی ایل واز آلسو مورٹل، دیئر فور آل مین آر۔ اب یہ جو تمہارا جملہ ہے یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں، اب یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ ہے وچ آر کنفرم بائی یو تھرو یور ڈائریکٹ ایکسپیرینس۔ لہذا اب اگر تم کوئی جنرلائزیشن کرو گے، یعنی کوئی پریڈکشن دو گے اور ایکسپلینیشن دو گے، وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بنیاد پہ کرو گے، اور فیکٹ اگر کوئی تم ایکوائر کرو گے، جیسے یہ فیکٹ ہے، یہ تم نے فیکٹ ایکوائر کی ہے ایک پروسیس کے تھرو، ایک انالیسس کے تھرو اور ایک آرڈر آف امپیریکل ججمنٹس کی بنیاد پر، تو تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ تم کوئی لا اور کوئی تھیوری بناؤ۔
تو جو پہلی چیز کیا، یہ بات تم لوگوں کو بہت کمپلیکس تو نہیں لگی؟ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک فارمل ریزننگ ہے جو ڈیٹا تم دو گے اس سے کنکلوژن ڈرا کر کے تمہیں دے دے گی، دیٹ از ڈیڈکٹیو ریزننگ۔ لیکن ڈیڈکٹیو ریزننگ کا پرابلم کیا ہے کہ وہ اے پرائیری ڈیرائیو کر کے دیتی ہے، تمہیں ریزلٹ نکال کے دیتی ہے، لیکن اگر تم نے ڈیٹا غلط ڈال دیا تو وہ غلط کنکلوژن نکال دے گی۔ مثال کے طور پہ اگر تم نے لکھ دیا آل مین آر All men are blue, huh? Blue. Amir is a man. Therefore, Amir is also بلو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈیڈکٹیو ریزننگ کا ماڈل ہے، یہ ایک میکینیکلی ڈیریویشنز نکال کے تمہیں دے دیتا ہے۔ اگر تم نے اس میں ڈیٹا غلط ڈال دیا تو وہ غلط کنکلوژن نکال دے گا اور تمہیں سرٹینٹی دے گا کہ یہی ہے ٹرو۔ لہذا تمہیں قدرت نے ایک دوسری صلاحیت دی ہے ریزننگ کی کہ تم انڈکشن کے اوپر جاؤ، पर्टिकुलर डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस में जाओ, ये ट्रू है क्योंकि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा अ मैन एट प्लेस एक्स वन एट टाइम टी वन वॉज ऑल्सो मॉडल, और ये दूसरा भी तुमने इंसान खुद देखा, तीसरा भी खुद देखा, चौथा भी खुद देखा, साला साल तक तुम देखते रहे और उसके बाद तुमने कहा कि ये तमाम इंसानों की जितने वेरिएबल्स हैं मैंने कंट्रोल किए, मैंने उम्र को कंट्रोल किया, मैंने नस्ल को कंट्रोल किया, मैंने रीजन्स को कंट्रोल किया, मैंने मौसम को कंट्रोल किया, साल के 365 दिनों में वक्त के हर सेकंड के अंदर मैंने इंसानों को मरते हुए देखा, लिहाजा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तमाम इंसान फानी हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल। जी ठीक है, जब हम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें देखना होता है उसकी स्ट्रेंथ। ये तुम इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये कह रहा है कि भाई सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो प्रिडिक्शंस तुम करते हो और जो एक्सप्लेनेशंस करते हो या फैक्ट्स को अक्वायर करते हो उसमें इंडक्शन और डिडक्शन तुम्हें मदद करने के लिए मौजूद है तुम्हारे पास, और इसी की बुनियाद पे तुम लॉज और थियरीज बनाते हो। इन दो सलाहियतों को सामने रखते हुए फ्रांसिस बेकन से जब लोगों ने पूछा कि ये साइंस साइंस क्या है, ये साइंस साइंस अबे हंस क्यों रहे हो, क्यों हंसी क्या, हंसी क्या, वो इनू वाला एक गाना याद आ गया मेरे ख्याल में इनको, इनकी जवानी का था कि ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू भाई लोग जिस भी परेशान होते हैं बार बार वही पूछते हैं ना, तो साइंस। तो उसने कहा भाई साइंस होती है ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन जनरलाइजेशन, और ये जो तुम देख रहे हो ना ये एक्चुअली तुम एक्सपेरिमेंटेशन ही कर रहे हो, यानी कि तुमने एक इंसान को मरते हुए देखा तुम हैरान हो गए कि भाई ये क्या हो गया बंदे को, क्या कर रहे हैं इसके साथ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है पहली बार अपने घर के किसी बंदे को मर के देखता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है उसका, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, घबरा जाता है वो कि हो क्या गया इसको, क्यों नहीं उठ रहा ये, तो कहते हैं ये चले गए, ये अल्लाह मियां के पास चले गए, इनकी रूह चली गई, ये चली गई, फिर वो ले जाते हैं उसको दफना देते हैं, वो उसके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, क्या कर रहे हैं बंदे के साथ ये, पत्थर रख दिया, अब कहां गया वो, गया मिट्टी में, अरे भाई मुझे ना डालने साले ये, तो वो परेशान हो जाता है बच्चा। तो ये जब भी इंसान के साथ कुछ होता है फिर वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो जो उसकी असम्पशंस होती हैं और प्रीसपोजिशंस होती हैं वो उसे ऑब्जेक्टिव नहीं होने देती। अब साइंटिफिक मेथडोलॉजी के लिए बेकन ये कह रहा है कि तुम और ऑब्जर्वेशन तुमने देख ली कि एक बंदा मर गया, अब तुम एक हाइपोथेसिस बनाओ, क्या तमाम इंसान फानी होते हैं, फिर तुम जाओ एक्सपेरिमेंटेशन पे और एक्सपेरिमेंटेशन पे देखते रहो कि भाई बूढ़ा भी मर जाता है और जवान भी मर जाता है और औरत भी मर जाती है और काला भी मर जाता है और गोरा भी मर जाता है और दिन में भी मर जाता है और रात में भी मर जाता है और बहार में भी मर जाता है और खिजा में भी मर जाता है और दुख में भी मर जाता है, खुशी में भी मर जाता है, जिल्लत में ही मर जाता है, इज्जत में ही मर जाता। अब देखा यार ये तो बड़ा अजीब, तो इसके बाद आपने पूरे यकीन से कह दिया, सर्टेनिटी तुम्हें मिल गई और फिर तुमने प्रिडिक्ट किया कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन प्रिडिक्शन कर रहे हो तुम, अभी मरे नहीं है सारे इंसान, सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्शन की। लेकिन इसके पीछे जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ क्या है कि तुमने ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे ये दावा किया है, लिहाजा तुम्हारा ये दावा साइंटिफिक समझा जाएगा, ये कोई प्रोफेसी नहीं है, सही है, ये कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं कोई बुजुर्गी की बुनियाद पे नहीं तुम कह रहे, बल्कि तुम एक साइंटिफिक स्टेटमेंट दे रहे हो, और ये साइंटिफिक स्टेटमेंट एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है, इस वजह से इसकी बुनियाद पे तुम थियोराइजेशन कर सकते हो, लॉ बना सकते हो। मिसाल के तौर पे तुमने देखा कि गर्मी में और चीजों के फैलाव में कोई ताल्लुक तुम्हें ऑब्जर्व हुआ है, जैसे तुमने छत के ऊपर कोई प्लास्टिक की चीज रख दी, धूप पड़ी वो डिफॉर्म हो गई, कुछ और चीजें रखी वो खराब हो गई, तुमने कहा ये कैसे खराब हो रही है, क्या कौन कर रहा है ये, तो फिर तुमने एक थियरी बनाई कि भाई हीट एक्सपेंड करती है चीजों को, तो फिर तुमने कहा कि भाई एक चीज तुमने रखी प्लास्टिक एक्सपेंड व्हेन हीट और आयरन एक्सपेंड व्हेन हीट और जो है वो गोल्ड एक्सपेंड व्हेन हीट और ये क्या कहते हैं गैसेस एक्सपेंड व्हेन हीट और जो है, तो फिर आपने कहा ऑल मैटर एक्सपेंड व्हेन हीट, तो तुमने जनरलाइजेशन कर दी कि मादे की कोई भी शक्ल हो उसको अगर आप हीट करोगे वो एक्सपेंड करेगा। तो आपकी ये जनरलाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल फाउंडेशन के ऊपर खड़ी हुई है और जनरलाइजेशन है। बात समझ में आ गई जी?
लेवल्स भी होंगे
जी, मतलब किस चीज से
डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन? जी, डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन है, और वो कहते हैं कि डिग्री ऑफ वेरिफिकेशन बढ़ती है बाय द सैंपल, यानी कि आप कितनी वेरिएबल्स को सिस्टमैटिकली कंट्रोल करते हैं, कितना ज्यादा नंबर ऑफ केसेस अपने बढ़ाते हैं, कितनी सर्टेनिटी अपनी बढ़ाते हैं और कितनी डाइवर्स सैंपलिंग आप करते हैं, तो इससे तुम अपनी डिग्री ऑफ वेरीफाइबिलिटी बढ़ाते हो। तो इससे तीन बातें पता चली कि इंडक्शन तुम्हें मदद देती है प्रिडिक्शन करने में भी और एक्सप्लेनेशन में भी, दोनों में मदद कर सकती है तुम्हें। दूसरा तुम्हें यह बताती है कि तुम्हें सर्टेनिटी देती है जनरलाइजेशन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन वो प्रोवाइड करके आपको एक यकीन देती है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, भाई हमने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया है और हमें यकीन है कि ऐसा होगा। और तीसरी बात ये कि इंडक्शन तुम्हें ये भी बताती है कि तुमने असम्पशंस की बुनियाद पे ये नहीं किया, बल्कि तुमने डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू इसको कंफर्म किया है। लिहाजा ये जो जुमला आपने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुना होगा, साइंस ने साबित कर दिया, साइंस साबित करती है तो साबित हो जाता है, साबित कर दिया, वेरिफिकेशन कर दी। लिहाजा इंडक्टिविस्टिक जो अप्रोच थी साइंस की, जो बेकेनियन है या नाइव इंडक्टिविज्म था, वो ये कहता था साइंस वेरीफाई conclusively verify by the derivation of objective empirical, with the help of the objective empirical judgment or deductive reasoning. ये बात समझ में आ गई?
ये generalization किस वक्त करेंगे, इसकी क्या मुझे observation हमने किया है
नहीं, एक ऑब्जर्वेशन से नहीं हो, एक यानी कि इंडक्टिविस्टिक जनरलाइजेशन में तुम्हें यकीन हासिल करने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, जिसका सैंपल ज्यादा होगा, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ केसेस होंगे और उनमें वेरिएबल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कव्वे वाली भाई ने एग्जाम्पल दी, सही है, तो अगर फर्ज किया कि तुम कहो कि कव्वा काला होता है या कोई परिंदा तुमने देखा कोई खास तौर जैसे तीतर है, तो बाज जानवर परिंदे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में कुछ रंग के होते हैं और गर्मियों में कुछ रंग के होते हैं, बर्फबारी में अपना रंग चेंज कर लेते हैं, सही है, यानी कि बाज जानवर भी ऐसे हैं, जैसे फॉक्स है वो अपने रंग चेंज कर लेती है, अब सर्दियां होती हैं तो उसका बाल वाइट हो जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से बास यानी कि उनकी परिंदों की शक्लें होती हैं वो बर्फ में वाइट हो जाते हैं और जब बर्फ पिघल जाती है भूरे हो जाते हैं, तो ये कहे कोई आदमी से कि उसने सिर्फ सर्दियों में देखे हो वो परिंदा, तो वो कहेगा ऑल एक्स बर्ड्स आर वाइट, लेकिन बाद में वही बर्ड उसने गर्मियों में देखा तो वो नहीं पहचान पाएगा क्योंकि उस वक्त वो भूरा हो चुका है. यू नो व्हाट आई मीन. तो इसीलिए वेरिएबल क्या होता है, सीजन भी वेरी कर सकता है आपके एक्सपीरियंस को, इसी तरीके से एज वेरी कर सकती है यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन को, इसी तरीके से टेम्परेचर वेरी कर सकता है. तो जो ऑथेंटिक इंडक्शन होगी, सोफिस्टिकेटेड इंडक्शन होगी, जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो आपके तजर्बे पर असरअंदाज हो सकते हैं या उस चीज की फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अपीयरेंस को या इंपेरिकल मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, उन तमाम वेरिएबल्स को जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तब वो जनरलाइजेशन ऑथेंटिक और लेजिटिमेट जनरलाइजेशन. इसकी लिमिट कोई नहीं है, ये आप खुद तय करोगे कि तुमने इनफ डेटा तुमने ले लिया है. और ये डिपेंड करता है तुम्हारे आईक्यू पर, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर, तुम्हारे रिसोर्सेस के ऊपर, तुम्हारे वक्त के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर. तो तुमने देखा होगा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है पूरी दुनिया में, उसके अंदर आप टाइम फ्रेम लेते हो कि देखें जी मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च करूंगा इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक, उसके बाद अगर कोई वेरिएशन होगी मेरे डाटा में तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं. यू नो व्हाट आई मीन. तो ये तुम तय करोगे. अब आ जाओ आखिरी चीज, इंडक्शन के अंदर, ये नाइव इंडक्टिविज्म के अंदर ये लिखा है इसने कि बहुत सारे सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स थे जो साइंस की थियराइजेशन की राह में बाद में जाकर रुकावट बने. पहला जो इसमें प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम इसके अंदर भाई, ओ ये तो मुझे नहीं मिटाना चाहिए, वो पहला प्रॉब्लम इसके अंदर ये था कि फ्रांसिस बेकन ये कहता था कि भाई साइंस बिगेंस विद ऑब्जर्वेशन. हाँ, साइंस बिगेंस विद ऑब्जर्वेशन, सही है. लेकिन बाद में जब इसको सोफिस्टिकेटेड अंदाज में एनालाइज किया गया तो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन से पहले थियरी होती है. साइंस डज नॉट बिगेंस विद ऑब्जर्वेशन, साइंस बिगेंस विद थियरी. और उन्होंने ये कहा कि इंसान जो है बगैर थियरी के ऑब्जर्व करता ही नहीं है. लिहाजा इंसान का जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो ये है कि इंसान जब कोई जुमला भी बोलता है ना तो वो थियरी लिडन होता है. उसका जो जुमला होता है वो थियरी को पहले से प्रिज्यूम करके बोलता है. जो लैंग्वेज इंसान बोलता है वो थियोरेटिकली कलर्ड होती है. लिहाजा इंसान को जब किसी चीज की तरफ मुतवज्जे जो चीज करती है वो ऑब्जर्वेशन नहीं करती, उसकी थियरी का डिनायल उसे मुतवज्जे करता है. मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान की मौत ही को ले लें तो जब एक मौत इंसान देखता है तो बुनियादी तौर पर जो उसका नजरिया जिंदगी होता है वो डैमेज हो जाता है आदमी के मरने से. जो जिंदगी की कॉन्टिन्यूटी होती है, ताल्लुकात की कॉन्टिन्यूटी होती है, एक्सपेक्टेशंस की कॉन्टिन्यूटी होती है, वो एक लम्हे के अंदर ब्लॉक होके शटर कर देता है उसको. लिहाजा उसकी जो थियरी होती है अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आपने देखा है ना अभी रमजान आने वाले, उसके अंदर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, नेकी की बातें, अच्छी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेकी की बात करने वालों तो कहते हैं मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तो वो ब्रेक पे चले जाते. अब ये जो ब्रेक पे जो लोग गए हैं उसके इस जुमले के पीछे थियरी है. थियरी है कि ब्रेक के बाद भी तुम जिंदा हो गए और इंसान जिंदा ही रहता है. वरना इतनी बड़ी सच्चाई देखें, ये बहुत बड़ी सच्चाई है और ये आपके ईमान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो हजरत साहब बता रहे, वो बताने वाले हैं. ये अगर आपने दुआ पढ़ ली तो फिर अल्लाह की नजर में आपका रुतबा बोला, एक मिनट ब्रेक के बाद रू अफजा पिए, ये पिए, शरबत खाए, तरबूज खाए, पकोड़ा खाए, ये खाए और वो मर गए। जब उन्होंने आखिरी चीज देख रहे थे वो लजीजा का लजीजा रस मलाई बड़ी चाहत से बनाई और वो मर गए। अगर वो हजरत साहब की वो बात सुन लेता, हाँ अल्लाह मियाँ बल्कि वो कहता मेरे साथ साथ पढ़े, इस तरह भी होते हैं ना, वो साथ साथ पढ़ लेता, पहुंच जाता अल्लाह मियाँ के पास, खुश हो जाता अल्लाह ताला। और जिन लेकिन वो जब मर रहे थे लजीजा रस मलाई मिनटों में तैयार बड़ी जायकेदार, तो ये उन्होंने सुना। तो बुनियादी तौर पर सोफिस्टिकेटेड इंडक्टिविस्टों ने क्या कहा, थियरी लिडन होती है ऑब्जर्वेशन। जब एक एक औरत जो है वो चूल्हा जलाती है, चूल्हा जलाती है और आग नहीं लगती, पाकिस्तान की एग्जांपल है, जैसे जैसे गैस कुछ हो गई, हाँ गैस नहीं आ रही, तो वो कह रहे चूल्हा नहीं जल रहा, चूल्हा नहीं जल रहा, चूल्हा जलता है क्या, चूल्हा जलता है या नहीं जलता, चूल्हा नहीं जलता है, गैस जलती है। तो वो कहते हैं चूल्हा क्यों नहीं जल रहा, तो इसका मतलब ये होता है ये लिडन है, इसमें एक थियरी लिडन है, ऑब्जर्वेशन उसको स्ट्राइक कर रही है कि कल तो चूल्हा जलता था और परसों भी चूल्हा जलता था और आज चूल्हा नहीं जल रहा, इसका मतलब है देयर इज समथिंग अदर देन दिस स्टोव विच इज बर्निंग, which compel you to observe the root cause of why it is not burning, so that you are going to investigate and you develop an observation and then hypothesis, then experimentation and then generalization. तो पहली चीज वो ये बताते हैं sophisticated inductivist कि वो जो पहले के जो भाई थे उन्होंने हल्का लिया साइंस को, कि साइंस स्टार्ट करती है ऑब्जर्वेशन को, साइंस ऑब्जर्वेशन को से नहीं स्टार्ट करती, थियरी से स्टार्ट करती है, वो थ्योरेटिकल उसकी जो फाउंडेशन होती है एक साइंटिस्ट की, वो उसे चीजों को यूनिकली ऑब्जर्व करने पे मजबूर करती है, उसकी उसकी जो थ्योरेटिकल साइड है जब ब्रेक होती है तो वो बिल्कुल दूसरी तरह से ऑब्जर्व करता है, जैसे कि न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा, तो सेब से सेब गिरने से ऑब्जर्वेशन से ऐसा हुआ, ऑब्जर्वेशन से ऐसा नहीं हुआ भाई, थियोरेटिकल साइड थी न्यूटन की जो उसे बता रही थी मेरे सर पे ऊपर क्यों नहीं गया ये, नीचे क्यों आया ये, तो ये न्यूटन का सर पे गिरा था, वो किसी कद्दू के सर पे गिरता तो वो कहता है ये कौन सी बात है, सेब तो नीचे ही गिरता, हमारे अब्बा के जमाने में भी गिरता था, दादा के जमाने में भी गिरता था, सबके जमाने में गिरता था, तो सेब तो नीचे ही गिरता, तो ये कौन सी ऐसी हैरान कौन बात है भाई, वो न्यूटन का सर था, आम सर नहीं था वो। तो पहली चीज, दूसरी चीज ये कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हम जैसे आदमी की ऑब्जर्वेशन नहीं होती, जैसे बेकिन कहता है भाई साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, तो भाई वो तो सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कहता है नहीं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो है सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि वो आम ऑब्जर्वेशन नहीं होती, वो सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है जो चीजों के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप से, कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लिहाजा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में और लेमैन ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि लेमैन ऑब्जर्वेशन कंपेल कर सकती है एक साइंटिस्ट को, लेकिन उसका जो थ्योरेटिकल साइड है उसे सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मजबूर करता है, और सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन हर कोई कर रहा होता है, साइंटिस्ट भी कर रहे होते हैं, यानी कि आप जो घर से यहां तक आए हैं तो आपने हजारों चीजें ऑब्जर्व की होंगी, लेकिन हर चीज आपको याद नहीं होगी, आपको कुछ मखसूस चीजें ही याद होंगी, और जो मखसूस चीजें आपको याद हुई वो आपने एब्स्ट्रैक्ट कर ली है, उनके दरमियान अब आप कॉजल रिलेशनशिप तलाश करने की सलाहियत रखते हैं, और वो ज्यादातर किसी ना किसी थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में आपकी किसी थ्योरेटिकल फाउंडेशन को क्रॉस कर रहा होगा। तो ये दो बातें। तीसरा सबसे खौफनाक जो चीज है वो ये कि जो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन है वो ये कहता है कि साइंस साबित करती है, जैसे बेकन कहता था कि साइंटिस्ट जब कोई बात कहता है तो उसे वो साबित करता है, वो अक्वायर कर लेता है फैक्ट को और डिराइव कर लेता है फैक्ट को बाय कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशंस। तो जो लोग सोफिस्टिकेटेड इंडक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा भाई इंडक्शन के अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम है, और सीरियस प्रॉब्लम यह है कि जो वो स्टेटमेंट्स बनाता है और जो वो कंक्लूजन देता है उसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि उसकी जो तमाम स्टेटमेंट्स होती हैं, चूंकि वो ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसलिए नेचर वाइज वो पर्टिकुलर जजमेंट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होती हैं। यानी कि अ मैन एट प्लेस एक्स वन एट टाइम टी वन वॉज मॉडल, ये ट्रू तमाम इंसानों के लिए नहीं है, उस इंसान के लिए जो मर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। लिहाजा जितने भी इंसान या एक करोड़ इंसानों को भी अगर उसने देख लिया तो ये तमाम स्टेटमेंट अपनी साख के एतबार से पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन जो उसने क्लेम किया है वो ऑल का क्लेम किया है, तो पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे यूनिवर्सल क्लेम करना नॉन साइंटिफिक है, ये एक नॉन साइंटिफिक बात है कि आफ्टर हैविंग पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस यू आर क्लेमिंग फॉर ऑल। तो इस बात की कोई नेसेसरी जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये साबित हुआ कि तमाम इंसान फानी है, ये साबित हुआ नहीं, ये साबित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए तमाम इंसानों को मार के देखना पड़ेगा। अगर फर्ज कर लेते हैं हम सारे इंसानों को मार भी दें तब भी वो इंसान जो सबको मार रहा है वो तो अभी जिंदा ही है, हो सकता है वो ही वो हो जो ना मरे, और अगर वो अपने आप को भी मार दे सच्चाई की खातिर तो साबित किसके ऊपर होगा। लिहाजा अगर आपने वेरिफिकेशन का स्टैंडर्ड इंपेरिकल रखा, तजर्बाती रखा, तो ये वेरिफाइबिलिटी प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो गई नहीं। That is the problem of induction. इसे problem of induction कहते हैं। जो दुख की बात है वो ये कि ये problem of induction बहुत अरसे पहले हमारे पैदा होने से बहुत साला साल पहले ये फलसफियों ने लिख दिया, हजारों किताबों के अंदर ये छप गया, सब लोगों ने इसे पढ़ लिया, लेकिन बहुत सारे लोग जो साइंस के मद्दा थे उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह के बहुत बड़े बड़ी सच्चाइयों को ये कंक्लूसिवली क्लेम किया कि ये बुनियादी तौर पर इंडक्टिविस्टिक है, और रिलीजन के साथ उसको जोड़ दिया, आसमानी किताबों के साथ उसको जोड़ दिया। हजरत को पहले जाके वो क्रिटिक पढ़ लेनी चाहिए थी प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, कि भाई ये इंडक्शन का प्रॉब्लम ये है कि ये यूनिवर्सल क्लेम करता है पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे जो के गलत है। और चौथा इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब इंडक्शन वर्क करता है, यानी कि दुनिया में बहुत सारी कामयाबियां और साइंटिफिक डिस्कवरीज इंडक्टिविस्टिक मेथडोलॉजी से एक्सप्लेन होती हैं जो आज तक ट्रू भी हैं, यानी कि ऑल मेटल एक्सपैंड व्हेन हीट, सही है, लेकिन वो कहीं पर नहीं भी होती, जैसे पहले ये कहा जाता था ऑल मैटर एक्सपैंड व्हेन हीट, लेकिन जब वाटर को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक हीट दी तो बजाइए वो एक्सपैंड होता, वो और श्रिंक हुआ। इससे ये पता चला कि वाटर एक्सपैंड नहीं करता जब उसको हीट करो, कम से कम 4 डिग्री तक वो मजीद श्रिंक हो जाता है, इसलिए उसके लिए आपको ऑल मैटर एक्सपैंड व्हेन हीट से पीछे हटना पड़ा, जो एक जमाने में ट्रू समझा जाता था, और उसके लिए आपको एक अलग से क्लॉज लिखनी पड़ी एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जिसकी बुनियाद पे सर्दियों के अंदर जो मेरीन लाइफ है वो कैसे सरवाइव करती है, जो सतह के ऊपर पानी होता है उस पर धूप पड़ती है, तो धूप से 4 डिग्री के ऊपर बजाइए कि वो पिघले वो और बर्फ बन के हार्ड हो जाता है, और जो नीचे का पानी होता है वो पानी ही रहता है। तो इस तरह मैरीन लाइफ को कुदरत बचा लेती है, लेकिन इंडक्शन बहुत दफा वर्क करता है, लिहाजा आम तौर पे लोग समझते हैं कि इंडक्शन चूंकि इस प्रॉब्लम के बावजूद भी वर्क तो कर रहा है, लिहाजा हमें इसको चलाना चाहिए। सही है ना, इंडक्शन को चलाना चाहिए क्योंकि वो वर्क कर रहा है, तो इसे कहते हैं इंडक्शन पर सिंपल इन्यूमरेशन, यानी कि इंडक्शन को पे ऊपर ही इंडक्शन अप्लाई कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये प्रॉब्लम बता दिया तो आपने, हम तौबा करते हैं भाई, अल्लाह हमें माफ करे, आप सब भी माफ करो भाई, अल्लाह माफ करो, अल्लाह घर साफ करो, और इंडक्शन की बात आइंदा कोई नहीं करना, लाना तो उसकी शक्ल के ऊपर जिसने इंडक्शन को साइंटिफिक का, ऐसा कोई नहीं कहता। वो कहता हाँ ये प्रॉब्लम है भाई इंडक्शन में, लेकिन चलता तो है ना, तो क्या हुआ, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, इंडक्शन को ही अप्लाई कर देते हैं इंडक्शन पे। इंडक्शन वर्क्स एट इंस्टेंस वन, इंडक्शन वर्क एट इंस्टेंस टू, इंडक्शन वर्क्स एट इंस्टेंस थ्री, इंडक्शन वर्क एट इंस्टेंस फोर। Therefore, induction works all instances. बात समझ आ रही है, यानी कि गो के हमें मार के तमाम इंसानों को मार के देखने की जरूरत नहीं है, इट विल वर्क, और इवेंचुअली आप सब मर जाओगे और सारे इंसान मर जाएंगे। सही है, इसे हम कहते हैं इंडक्शन पर सिंपल इन्यूमरेशन, यानी कि द बेसिस ऑफ इंडक्शन इज इन इटसेल्फ नॉन साइंटिफिक। तो साइंस का पैमाना यह है कि किसी चीज को, की सच्चाई को जानने के लिए उसे उसके अलग अलग रग्म किसी पैमाने पे जांचा जाता है। इंडक्शन का कमाल यह है कि इंडक्शन की सच्चाई को जांचने का पैमाना इंडक्शन खुद है। ये एक नॉन साइंटिफिक फाउंडेशन है, इसके बावजूद के वो नॉन साइंटिफिक है, दुनिया में इंडक्शन को हमने कंक्लूसिवली डिसओन नहीं किया और इंडक्शन वर्क कर रही है। चार्मर्स ने इसको एक्सप्लिकेट कर दिया और लिखा भी है और बयान भी किया, उसको आप लोग पढ़ लिया, मैंने दो चैप्टर पढ़ाए, तेज पढ़ाए, लेकिन चूंकि हमें इसे पांच सेक्शंस के अंदर खत्म करना है, लंबा हम नहीं फैला सकते, इसलिए जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन करना है तो करते चले। नहीं नहीं, डेटा डिडक्टिव रीजनिंग इससे बहस नहीं करती कि आप डेटा क्या दे रहे हो। डिडक्टिव रीजनिंग वो डेटा को सिंक्रोनाइज करके तुम्हें कंक्लूजन दे सकती है, यानी कि फर्ज किया कि जैसे आपको, आपने धुआं देखा, धुआं, और आपने कहा आग लगी होगी, तो आपने आग तो अभी तजर्बे में आई है आपके, आग आपके तजर्बे में नहीं आई, लेकिन आपकी अकल आपको ये बताएगी कि धुआं और आग में एक नेसेसरी कॉजल रिलेशनशिप है, तो अगर धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी, है ना, तो तुमने कंक्लूड, तो ये डिडक्टिवली तुमने एनालाइज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डिडक्टिव रीजनिंग की कुछ कंडीशंस है, मिसाल के तौर पे, यानी कि एक चीज होती है उसे कहते हैं ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि एरिस्टोटेलियन है, उसके अंदर सिंगुलर यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है, सही है, वो उसके रूल्स हैं, सही है, वो इतना सिंपल नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है इसलिए हम इसको डील नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए तुम्हें बताऊँ कि ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अभी समझाना, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे ये जो है, ये जो मैंने पहला जुमला लिखा था ना, अब
आमिर ऑल मेन आर मॉर्टल,
आमिर इज अ मैन, देयरफॉर आमिर इज ऑल्सो मॉडल. तो तुम कह रहे हो ना कि एक डाटा होना चाहिए, तो एक डाटा है ही नहीं ना, ये तो जनरल स्टेटमेंट है. ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, और ये फिर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है. तो ये जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ये तो एक एक तजर्बे पे आ ही नहीं सकती ना, ये कहां से ले आया. ठीक है, उसूल. दूसरी बात ये कि इसमें बहुत सारे रूल्स वर्क कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे मैन जो है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है. इसे कहते हैं मिडिल टर्म. ये दोनों में होनी चाहिए. अगर दोनों में मिडिल टर्म मौजूद नहीं है तो आप कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं. दूसरी शर्त यह है कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए. अगर यहां पे सब्जेक्ट है तो यहां प्रेडिकेट होना चाहिए. मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, और कंक्लूजन के अंदर मिडिल टर्म नहीं होनी चाहिए. अगर कंक्लूजन के अंदर मिडिल टर्म आई तो कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा. समझे? तो मैं बता ही रहा था कि आप सब ने से मैंने पूछा ऑल मैन आर मॉडल, आमिर इज द मैन, तो आपने फिल बदी कहा, देयरफॉर आमिर इज ऑल्सो मॉडल, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट यू डोंट नो द रूल्स ऑफ द लॉजिक. विदाउट नोइंग द रूल्स यू आर डिराइविंग ट्रू कंक्लूजन. वाई? बिकॉज इट्स इन बिल्ट. लेकिन जब उसकी नीटी ग्रीटी में तुम जाओगे ना, तो फिर तुम्हें उसको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा. सही है? तो ये फिलॉसफी जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको लॉजिक पढ़ाते हैं, और वो भी एरिस्टोटेलियन लॉजिक पढ़ाते हैं. उसके बाद फिर उसके रूल्स, रेगुलेशन, फिर फॉर्मल लॉजिक अलग है, इनफॉर्मल लॉजिक अलग है, यू नो व्हाट आई मीन. उसके बाद फिर मिल ने उसमें कुछ एडिशन की, और दूसरी मुसलमानों ने कुछ एडिशन की उसके अंदर, तो और कुछ इनकोहरेंसेस भी बताई, लिमिटेशंस भी बताई. तो मैं ये जो, चूंकि हमारा कोर्स जो है वो इसके ऊपर नहीं था, वी वर फोकसिंग ऑन इंडक्शन. तो लेकिन ये तो है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो मदद करती है डिडक्टिव एनालिसिस के अंदर. ये इंपॉर्टेंट बात है.
जी ग्रीक्स एरिस्टॉटल,
वो आज के मॉडर्न फिलोसफर से मैच करता है, 60-70% बातों को भी उठाया गया है.
जी जी जी,
ऑफ कोर्स 2030
बाद में उसमें इजाफा किया गया, उसमें बड़ी वेरिएशंस भी लेकर आए. लेकिन वो जो एरिस्टॉटल
ग्रीक्स इतने मतलब जीनियस थे कि
नहीं नहीं दुनिया में बहुत सारी कॉमें जीनियस थी, और लेकिन ग्रीक्स का जो काम था वो महफूज हो गया, और बहुत सारी कॉमों का नहीं महफूज हुआ. मिसाल के तौर पे पैरामिड जिन्होंने बनाया था, जिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स की बुनियाद है, वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं. उनको डिराइव करना मुश्किल है कि कौन सी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और कौन सी थीमेटिक फॉर्मेशंस में वो करते थे, लेकिन वो महफूज चूंकि नहीं हो सका इसीलिए वो मुअम्मा बना हुआ है. इसी तरीके से जो बुद्धिस्ट हैं, अगर आप इंडिया चले जाएं अजंता अलोरा वगैरह के अंदर, तो आप देखें कि गौतम बुद्ध के मुजस्मे हैं, तो उसमें आप एक डायरेक्शन से देखें तो वही बुद्ध आपको रोता हुआ नजर आएगा, यानी कि दुखी नजर आएगा. दूसरे एंगल पे चले जाएं, वही बुद्ध आपको हंसता हुआ नजर आएगा, वही बुद्ध आपको जो है सोचता हुआ, एक ही बुद्ध. तो उनका यानी कि लाइट और की जो इम्पैक्ट है इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर, एक ही फेस से इतने वेरिएशंस निकालता है. इसी तरीके से जो आर्किटेक्ट्स थे हिंदुस्तान वगैरह के अंदर, उनकी सलाहियत यह है कि एक पोजीशन के ऊपर बादशाह बैठा हुआ है 100 सीढ़ियों के ऊपर, और बंदा एक खास जगह पकड़ा, उसका एक दायरा है, एक गुंबद है, वहां से वो बात करता है तो बादशाह को 100 सीढ़ियों ऊपर आवाज आती है, और बादशाह वहां से बात करते हैं तो यहां पे आवाज नहीं आती. यानी कि बादशाह की आवाज, बादशाह जो मशवरा कर रहा है, नीचे आदमी नहीं सुन सके, और यहां की बात बादशाह सुन ले, तो मसाइब क्या उसकी गीबत कर रहा है, बादशाह सब सुन रहे हैं, और बादशाह क्या फैसले कर रहा है किसी को समझ नहीं आ रही. तो ये आर्किटेक्ट थे, लेकिन उन्होंने महफूज नहीं किया उस...
जो कहते हैं 80-80 टन के जो पत्थर मौजूद है,
जी जी बिल्कुल, तो लेके
यस ऑफ कोर्स मैं यही बता रहा हूँ कि चाइनीज के अपनी टेक्निक्स हैं, और लेकिन चूंकि दुनिया को यूरोसेंट्रिक सिविलाइजेशन ने एक्सप्लोर करने के बाद, कॉलोनाइज करने के बाद इस तरह प्रेजेंट किया कि इल्म के जो सूते थे सारे वहीं से फूटते थे। भाई आपने अपने इल्म के जो रिसोर्सेस थे उनको अबैंडन कर दिया या कंटिन्यू नहीं किया, जैसे नेबिटियंस खत्म हो गए या सुमेरियंस खत्म हो गए या बेबीलोनियंस खत्म हो गए, पर्शियन महफूज रहे लेकिन उन्होंने उस तरह से उसको नर्चर नहीं किया, वो कन्वर्ट हो गए दूसरी चीजों के ऊपर चले गए। तो यूरोसेंट्रिक जो थे उन्होंने महफूज किया, मुसलमानों ने भी बड़ा रोल प्ले किया उसको प्रोटेक्ट करने में। तो ये तो दूसरों को बेवकूफ नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी मजबूरी है कि हमने यूरोसेंट्रिक कॉन्टेक्स्ट में इसे पढ़ा है। हो सकता है उनके पास जैसे जापानीज के बाद एडिशन की अलग मेथडोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं, बिल्कुल अलग तरीके से वो करते हैं।
सभी मॉडर्न साइंस और फिलोसफी में जो साइंस जो
मेडिवल जो साइंसेस थी उनमें
फिलोसफी में पहली साइंस जो है वो फिलोसफी का ही पार्ट
था। जी जी,
अब जो ये जो इंटरेक्टिव पीरियड बाद जो है वो मॉडर्न साइंस जो आई है इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है?
बुनियादी तौर पर जो शुरू की जो साइंसेस थी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एरिस्टोटल ये समझता था या और एरिस्टोटल का ये कहना था कि चीज़ों के दरमियान जो कॉजैलिटी है वो प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेशन पे बेस करती है, यानी कि कोई कॉज जो इफेक्ट जो होता है उसके पीछे चार कॉजेज होते हैं, चार कॉजेस मिलके वन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है एफिशिएंट कॉज, एक होता है मटेरियल कॉज, एक होता है फॉर्मल कॉज और एक होता है फाइनल कॉज। एफिशिएंट कॉज वो उसे कहते हैं कि फर्ज किया ये बिल्डिंग है तो इसका एक एफिशिएंट कॉज होगा, मजदूर होंगे जिन्होंने बिल्डिंग बनाई होगी। मटेरियल कॉज ये होगा कि आपके पास लोहा सीमेंट वगैरह है। फॉर्मल कॉज ये होगा कि इसका कोई रैशनल प्लान ऑफ एक्शन होगा, अगर वो इरेशनल होगा बिल्डिंग गिर जाएगी। और फाइनल कॉज ये होगा कि आपको बिल्डिंग बनाने का क्या मकसद है, आपका क्यों बना रहे हो आप बिल्डिंग। तो ये चार कॉजेज होंगे तो एक इफेक्ट होगा। मॉडर्न साइंस ने बताया नहीं, यूनिटरी कॉजल रिलेशनशिप होता है, एक कॉज का एक इफेक्ट होता है, और ये जो एरिस्टोटल वगैरह कहते थे वो ठीक नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जो एंशिएंट थी वो प्लूरालिटी ऑफ कॉजेशन पे बेस करती थी, और उसके अंदर वो नॉर्मेटिव साइड को डिटैच नहीं करते थे, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। और भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है लेकिन अभी हम उस पर इंगेज नहीं होना चाह रहे।
तो मेरा क्वेश्चन ये है, आज के मॉडर्न साइंस है वो ज्यादातर जो आपको एथिज्म की तरफ लेके जाए, और जो यूरोसेंट्रिक व्यू अगर आप देख लें सेक्युलरिज्म व्यू जो फॉर्म हो रहा है उसको आप किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप रिलीजन को सही जो फॉर एग्जाम्पल हमारे बिलीफ को थ्रेटन ना करे और हम साइंस साइंटिफिक स्टडीज को भी।
देखिए पहली बात तो ये होती है कि आप जब आप तय करते हैं, जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया, आप ये बताएं कि आपका बुनियादी प्रॉब्लम क्या है। होता ये है कि इंसान जो है वो पैराडाइम्स को एमलगमेट करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे रिलीजन कह रहा है जो सच्चाई है, तो अगर फर्जिया तुम कहो मेरी सच्चाई को साइंटिफिकली कंफर्म कर दें तो इसका मतलब है वो काफी नहीं है ना, वो सच्चाई आपके लिए जो रिवील हो गई है, हैं? तभी आप कह रहे हो भाई कंफर्म कर दो, पता नहीं अल्लाह मियां है कि नहीं है, जरा कर दें जरा कंफर्म। जी मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप इस नतीजे पहुंचोगे यार चूंकि कंफर्म नहीं हो रहा फिर मैं छोड़ देता हूं भाई। तो बुनियादी तौर पर ऐनुल यकीन है आपका। तो बुनियादी इशू यह है कि पहली बात तो यह है कि ये कहना कि मॉडर्न साइंस नेचुरली या नेसेसरली एथीज्म की तरफ लेके जाती है जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप उससे क्या तकाजा कर रहे हो, आप उससे तकाजा क्या कर रहे हो। अगर आप इस दुनिया को देख रहे हो कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड के, तो साइंस काफी है आपके आपके मंजिल तक और मकासद पूरे करने के लिए, कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड. अगर आप कहते हो कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग विद गॉड, ये है आपका शऊरी सतह, तो आप कहोगे कि ठीक है दुनिया के लिए मैं साइंटिफिक मेथडोलॉजीज को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जहां पे साइंस अप्लाई नहीं होती उसके लिए मैं साइंस पे इन्हेसार नहीं करूंगा. लेकिन आपको नहीं जी मुझे तो साइंस ये भी करके दे, तो साइंस के तो दायरे से बाहर है, तो ये आपका प्रॉब्लम है. चूंकि साइंस आपके उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर पा रही, तो आप कहें फिर मैं इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता ही नहीं, उसको जिंदगी से बाहर निकाल देता हूं. तो ये इंसान को फैसला करना पड़ेगा कि वो जो अवेलेबल नॉलेज है या अवेलेबल मेथड है उसको वो किस तरह लेने की कोशिश कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली इंसानों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो गालिब इल्म होता है ना, वो गालिब इल्म अपने महकूम उलूम को बेदखल करता है. ये एक अलग डिबेट है कि इल्म के अंदर भी कंपेटिटिव रिलेशनशिप होता है, कंसोसिएशनल नहीं होता. ये बुनियादी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है कि आप इल्म का मकसद कंट्रोल ऑफ द रियलिटी है या एसोसिएशन विद रियलिटी है या रेलिंक्विशमेंट टू द रियलिटी है, ये आपके ऊपर है. तो बुनियादी तौर पर चूंकि साइंस एक डोमिनेंट इल्म है और वो खुदा और हकीकत के उन सवालात को एप्रोप्रिएटली एड्रेस नहीं कर सकता, और बहुत सारे मजहब की जो बुनियादी तसव्वुरात हैं उनके बारे में जो उन्होंने दावे किए तो उनकी नफी भी कर देता है ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल जजमेंट्स की बुनियाद पर, इसलिए लोग ऐसा समझते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा कमजोर होता है. क्रिश्चियनिटी को साइंस ने डिफीट नहीं किया, क्रिश्चियनिटी ने जब क्रिश्चियनिटी को तहफुज देने के लिए एरिस्टोटल को एडॉप्ट किया और ग्रीको रोमन फिलॉसफी को क्रिश्चियनाइज किया और एडॉप्ट कर लिया और उसको लेकर कायनात को एक्सप्लेन करने के लिए एरिस्टोटेलियन एस्ट्रोनॉमी को इस्तेमाल किया और एरिस्टोटेलियन मेथडोलॉजीज को इस्तेमाल किया, जब आकर न्यूटन ने एरिस्टोटल को गिराया तो उसके नज़र में क्रिश्चियनिटी भी गिर गई. तो आप बाइबल ने कब कहा था कि आप ये सब कुछ करो भाई, हजरत ईसा ने कब कहा था ये सब कुछ करो. तो जब आप अपने 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 पैराडाइम के ऊपर आपका रिलायंस कम होता है और आप एक दूसरे पैराडाइम ऑफ नॉलेज के ऊपर अपनी इल्म की इमारत खड़ी करते हैं, जब तक वो खड़ी रहेगी, जब वो गिरेगी, भाई एरिस्टोटल तो हो सकता है कि हजरत ईसा के बाद अगर आया होता तो कहता भाई सब कुछ चक्कर, मैं सब गलत बोल रहा हूं, वो हजरत ईसा जो कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं, ठीक है ये. तो एरिस्टोटल जो है पहले ही, वो तो हजरत ईसा के आने से पहले का आदमी है, उसने बेचारे ने जो सही समझा वो बता दिया. हो सकता है एरिस्टोटल वहां बोल रहा हो कि भाई क्यों कर रहे हो मुझे, मेरा मैं गलत बोल रहा था, मैं तो मर गया बिल्कुल, मुझे पता चल गया सब, दिखा दिया अल्लाह ने, ये नहीं है ऐसा, ये सब गलत मैंने कहा था और बहुत सारी मैंने बातें बड़ी अहमकाना बातें की थी. लेकिन चूंकि एरिस्टोटल बहुत सारी बातें रिमार्केबल कर रहा था और वो बड़ा आदमी था और जो क्रिश्चियंस थे उनमें कोई भी आदमी एरिस्टोटल की टक्कर का नहीं था, तो उन्होंने एरिस्टोटल को अडॉप्ट कर लिया. यही काम मुसलमानों ने भी किया, वो बेचारे क्रिश्चियन को क्या कह रहे हो, बड़े बड़े मुसलमानों ने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी ऐसी एरिस्टोटेलियन तड़के लगाए अपने थॉट के अंदर. क्या आप क्या, अब मैं उनको बिला वजह मैं नहीं छेड़ना चाह रहा उनको, हाँ नहीं, बहुत सारों ने किया और बहुत अज़लाइट्स ने भी किया और बाज़ अशराइट्स ने भी किया. लेकिन जो वो जो अगर फर्ज किया कि एरिस्टोटल गिरता तो उसके साथ वो भी गिरे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आप क्यों अप्रोच कर रहे हैं. बुनियादी तौर पर जब आप डेफिनेट आंसर चाहते हैं ना, डेफिनेट आंसर, तो फिर आप कहते हैं यार ये जो है ना रिलीजन जो है बुनियाद फराहम कर रहा है बहुत डेफिनेट नहीं है, शेकी है. क्योंकि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी रूह के ऊपर हावी है, तुम्हारी पर्टिकुलरिटी और तुम्हारी भूख तुम्हारी तकवे के ऊपर हावी अगर हो जाए और बहुत सारी चीजें, तो तुम्हारे लिए साइंस के लिए की तरफ इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो ये तो इंसान के ऊपर होता है कि वो ये करे। और फिर जो गालिब इल्मियत है वो भी ऐसी है जो आपको कह रही है कि वो सब अहमकाना था, वो सब अहमक लोग थे, साइंस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो सवाल ये है कि आपके अगर प्रॉब्लम ज्यादा मादी होंगे तो साइंस ज्यादा डोमिनेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम के तौर पे आपकी जिंदगी को डिटरमिन करेगी। और मैंने तो पहले ही आपको बताया कि वो आपसे कह रही है कि ज्यादा नॉर्मेटिव नहीं हो। और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि देयर इज नथिंग नॉन साइंटिफिक टू डिस्कवर और टू डिजाइन और टू क्रिएट न्यूक्लियर बॉम्ब, बट इट इज नॉर्मेटिवली सीरियस दैट व्हाई यू आर डिराइविंग दिस काइंड ऑफ बॉम्ब, व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो साइंस आपको ये नहीं बताती कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। साइंस आपको बताती है कि भाई एटम को ब्रेक करोगे ना इस तरह एनर्जी निकलेगी, उसको ऐसे काबू करना है। अब आपकी मर्जी, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाओ। तो अगर आपने अच्छा इंसान बना लिया तो साइंस पे हाकिम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने टट्टू बनाया तो साइंस उसके ऊपर हाकिम। इट इज कुछ लोग सवार होते हैं सवारी पे और कुछ लोगों पे सवारी सवार होती है, समझे। तो ये तो आपको सवार को देखना पड़ेगा कि वो सवार भी करना चाह रहा है या सवारी को अपने ऊपर सवार करना चाह रहा है। ठीक है, अभी यहीं पे रोक लें। ठीक है।